या प्रोग्रेस उसके इन इंग्रेडिएंट्स को जिसको हमने इन आयतों में देखा, अगर हम निकाल दें तो सक्सेस पकेगी ही नहीं। ये नहीं कि उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, ये नहीं कि उसकी खुशबू कम हो जाएगी, बनेगी ही नहीं। कोई आपसे पूछ ले कि कामयाबी किन चीजों से मिलकर बनती है, तो आप और मैं इसी का नाम लेंगे। और इसकी रोशनी में हम अफराद के ऊपर लेकर सबसे पहले अपने आप को देख लें, कौमों पे लेकर अपनी कौम को देख लें, मिल्लत होने के नाते मिल्लत को देख लें, शहरी होने के नाते अपने शहर को देख लें, खानदान का फर्द होने के नाते। इसी तरह फिर गिरोह, कोई जमात, कोई ऐसी तंजीम जिसके नाम के साथ हम अपने आप को दुनिया में पेश करते हैं एक तारुफ की गरज से, देख लीजिए अगर हमारे अंदर इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो उतनी ही कामयाबी नहीं होगी। आज आपको नॉन मुस्लिम जब कामयाब होते हुए दिखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद वो इसलिए कामयाब है कि वो काफिर है। नहीं, वो इसलिए कामयाब है कि वो अल्लाह के मामले में, देखिए अब आप सोचेंगे कि या तो कद अफलहल मोमिनून था, पहला लफ्ज ईमान था, फिर दूसरा वतन लजीना हम फी सलातिम खाशियून था, तो आज तो काफिर ना वो मोमिनून में आते हैं ना वो अल्लाह ताला के साथ मामला करते हुए नमाजें पढ़ते हैं, तो फिर वो कामयाब क्यों है? सवाल पैदा हो सकता है ना। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला का मामला ईमान वाले से काफिर के मुकाबले में मुख्तलिफ है। काफिर को अपना दीन छोड़कर दुनिया में तरक्की मिल सकती है, मुसलमान को अपना दीन छोड़कर दुनिया में तरक्की नहीं मिल सकती। ये इसके पीछे राज है। वो कहते हैं ना कि खास है तरकीब में कौम हाशमी, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और कौम है ना, ये एक खास ही कोई चीज है। ये कुछ चीजें छोड़ने और कुछ चीजें रखने से नहीं बनती, एक किस्म की आप कह लें क्वालिटी कंट्रोल है, या रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड। बाकी काफिर है, फाजिर है, मुनाफिक है, वो कुछ भी करे ना करे उसका चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जिनको अपनी अपनी क्वालिटी का अंदेशा होता है वो तो फिर जरा सी चीज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और जिनको क्वालिटी नहीं वो कहते हैं कि ठीक है हो गया नहीं हुआ वो चल चलाओ का मामला कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको इन आयात को पढ़ने के बाद तो बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, अब जो आगे है उसका नुस्खा हमारे हाथ में। कोई ये तो नहीं कह सकता कि मेरा तो खाना कभी अच्छा बना ही नहीं, तो अब बनेगा भी नहीं। भाई कल तक नहीं बनता था तो अब बनाना शुरू कर दो, कल तक आपको नहीं पता था इसमें क्या डालते हैं कैसे पकाते हैं, आज आपको पता चल गया। तो यकीन कीजिए ये बड़ी बड़ी बातें करने और अगर आज से सिर्फ और सिर्फ हम में से हर एक अपनी जात की जिम्मेदारी ले ले, ओनली फॉर मी, जैसे हजरत मूसा ने कहा था ना कि अल्लाह मैं तो बस अपना या ज्यादा से ज्यादा अपने भाई पे इख्तियार रखता हूँ, मेरा तो इस कौम पे कोई इख्तियार नहीं। जितने लोग आप बैठे यहाँ सुन रहे हैं और जितने हमारे ऑनलाइन साथी हमारे साथ हैं या जो बाद में सुने, अगर हम में से हर एक सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले तो यकीन कीजिए कि हमारा मामला बदल सकता है। यही दुनिया होगी, यही जमीन होगी, यही आसमान होगा और मुसलमानों की किस्मत बदल जाएगी। हम सब अपने हाथ से खुद अपनी तकदीर के फैसले कर सकते हैं, शर्त यह है कि हम इस पे चलें। अब आगे चलते हैं, आज का जो सबक है हमारा लेसन नंबर 173, थोड़ा सा इसका खुलासा करते हैं। पहले सबक में अल्लाह सुबहान तआला ने हमें कुछ ऐसी सिफात बताई कि जिसके ऊपर अमल करने से इंसान को इज्जत मिल सकती है और जिनको छोड़ने का नतीजा सबके सामने है। आज के सबक से अब हमें तज़कीर भी है या मिल्ला के साथ साथ तज़कीर भी बिल आला इल्ला भी आला इल्ला, दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि अब तारीख से कुछ सबक सुनाए जा रहे हैं, कौन कामयाब हुए और कौन नहीं हुए। यानी अब इस सबक में हम धमकियां और डरावों के बाद अल्लाह की तरफ आने का फैसला देखेंगे। हर मजहब में, चाहे वो यहूदियत हो, नसरानियत हो, या इस्लाम हो, या कोई और हो, नबूवत का आगाज हजरत नूह से हुआ। इसलिए आज के सबक में सबसे पहले हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ेंगे और उसमें से हमारे लिए इतनी अमल की बातें, कैसे लगता है कि जैसे ये आज के दौर की कहानी है। फिर इसी तरह मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपने और मैंने इस सारे सबक को सुनते वक्त क्या सोचना है, आज के दौर के मतलब आज के दौर में दीन की तबलीग करने वाले, दीन की तरफ बुलाने वाले, उनका तर तरीका, उनके हाल अहवाल और हजरत नूह का तरीका तालीम, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि झुठलाने वाले तो हर दौर में एक ही रहे। तो आइए आयतों को साथ लेकर आयत नंबर 23 से शुरू करते हैं, और हकीकत में हक की तरफ बुलाने वालों का तरीका है। हम सब के लिए इसमें बहुत अमल की बातें हैं कि हम अपनी इस्लाह की खातिर अगर अंबिया कराम के उसवे को अपना लें तो आज भी नतायज मुख्तलिफ हो सकते हैं। आयत नंबर 23, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, और बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ। यानी अल्लाह ताला का फैसला क्या है कि गाहे बगाहे बिगड़ी हुई कौमों की हिदायत के लिए नबियों को भेजते हैं। हजरत आदम से लेकर नूह के बीच में तकरीबन 10 करन गुजरे, आज के दौर में आप कह लीजिए 10 सदियां। उस दौर में बिगाड़ की जो पहली सूरत पैदा हुई थी वो शिर्क था, और वो शिर्क भी कौन सा था? शख्सियत परस्ती का शिर्क था। चंद नेक लोग जिनके बारे में लोगों का गुमान किया था कि हम पर अल्लाह की जो रहमतें हो रही हैं वो इनके तुफैल हो रही हैं, और अब इनकी तबई मौत की सूरत में हमारी पकड़ आ जाएगी। शैतान ने इस बात को डालकर दिल में ये नहीं कहा कि अब तुम भी नेक हो जाओ, वो नेक थे चले गए, तुम भी नेक हो जाओ, ये कह दिया कि इनकी मूर्तियां बनाकर अपने घरों में रख लो। कुछ अरसे के बाद उन मूर्तियों को इबादत की जगहों में रखा जाने लगा, और अगली नस्लों में फिर उन मूर्तियों को बीच में वसीला बनाकर अल्लाह को पुकारा जाने लगा। इस तरह से दुनिया में शिर्क आम हुआ, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह इनका नाम नहीं है, लकब है। कहते हैं कि अल्लाह के खौफ से कसरत से रोते थे, तो नौहा करने वाले, नौहा से मुराद अब कोई आज के दौर का नौहा ना कहें, मुराद ये कि रोने वाले, दिल टूटा हुआ था, लेकिन इनका नाम अब्दुल शकूर था। अल्लाह ताला ने इनको मोजज़ाना तौर पर तवील उम्र दी थी, 1,000 साल। आज भी अगर आप अपने 2014 को देखें तो पीछे 1,000 ले जाएंगे तो 1014 में ये पैदा हुए और 2014 में फौत होंगे। तो आप लगाइए कि 10 सदियों में आपके मेरे इस दौर के पीछे क्या कुछ आ गया। मोटी मोटी हिस्ट्री देख लें तो कितनी तो जंगें गुजर गई, और वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड, और न जाने क्या इतने मुख्तलिफ दौर हजरत ने देखे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां दीदा शख्स थे, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजजा भी था कि जो अल्लाह के काम करेगा अल्लाह उसकी उम्र में, उसकी सेहत में और उसके वक्त में बरकत दे देगा। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम इनको दिया, और उस वक्त उनके अंदर चूंकि शिर्की था तो लिहाजा इनका पहला नुक्ता जिस पे उनको रोका या टोका गया वो क्या था? अनेबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो, उसके गुलाम बन जाओ, क्योंकि मालिकु मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा कोई है ही नहीं उसके सिवा। यानी इतनी सिंपल बात, आप देखिए कि हक की तरफ बुलाने वालों का तरीका शुरू से एक ही रहा है, और वो क्या कि दिल को गैरों से खाली करके अल्लाह का बना दो, और साथ ही हल्का सा डरावा भी दे दिया, अफला तत्तकून, क्या तुम इसके गजब से डरते नहीं हो? किसी के घर जाकर तो तुम उसकी मर्जी के बगैर कोई चीज इधर से उधर नहीं करते, किसी के घर के बाहर दूसरे के नाम की तख्ती नहीं लगाते, और अल्लाह के सारे इख्तियार तुमने गैरों को दे दिए, तुम्हें क्या हो गया? और याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सिर्फ जरूरियात जिंदगी को ही पैदा नहीं किया, बल्कि हिदायत की जरूरत को भी पूरा किया, इंसान की रूहानी जरूरियात का इहतमाम किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिस शिर्क का शिकार थी वो अल्लाह के इख्तियारात में शिर्क था। इसको अरबी की टर्म में कहते हैं शिर्क फिल तसर्रुफ। तसर्रुफ क्या? सरफा या सरीफ, स्वाद से आएगा, ता स्वाद रौफा, फेरना, सरफा या सरीफ, हुई सरफ व नहव, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। यानी कहते थे कि अल्लाह के इख्तियार बंदों में भी होते हैं, ये भी दुआएं कबूल कर सकते हैं, ये भी बेटे दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हद नबी का सवाल क्या था कि अफला तत्तकून, तुम्हें डर नहीं लगता? आज दुनिया में तो कोई किसी के साथ ऐसा मामला नहीं करता कि उसका काम किसी और को दे दे, प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह किसी और को कह दे कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके काम आप मेरे काम करेंगे, तो जब असली प्राइम मिनिस्टर को ये पता चलेगा तो क्या हमें जेल में नहीं डाल देंगे? दुनिया में तो कोई इंसान एक रिश्ते में दूसरे रिश्ते को उसकी जगह पे ले आए तो झगड़े शुरू हो जाए। तो खालिक और मालिक के साथ तुमने ये मजाक करा कि तुम उसके बारे में अपनी मर्जी से फतवे देते फिरते हो, आप हलाल दत्ता को देखिए दावत कितनी लौट टोकर। और याद रखिए लाज सीधी और दो टोक बात है, ये भी जायज हाँ हो सकता है मुमकिन है इट्स पॉसिबल, ये सब बातें शिर्क को कभी खत्म नहीं करेंगी। हमारी उम्मत का शिर्क भी उसी वक्त खत्म होगा जब हम लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन की तबलीग करेंगे। आज भी अगर कभी किसी वक्त आपको मौका मिला हो किसी ऐसे शख्स की बात सुनने का जो इंसानों के इकतदार और इंसानों के तसरुप को साबित करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि जी बुजुर्गों के हाथ में बहुत कुछ है, ये दुआएं सुनते हैं, तो आप देखिए वो बड़ी ही दूर की लाते हैं। मसलन जी सीढ़ी पे चढ़ना है, ऊपर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी की जरूरत होती है, तो नाउज बिल्ला ये अल्लाह की सीढ़ी है, और हर बादशाह के पास जाने के लिए बीच में अर्दली होते हैं और उनके दरबारी होते हैं, तो अल्लाह के कुरान ऐसी किसी बात को नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने पहली दावत जो आमतौर पर पब्लिक को दी थी वो क्या थी? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कहो कि अल्लाह एक है उसके सिवा कोई नहीं, तुम फलाह पाओगे। ले आइए सूरत के थीम फलाह को इधर भी। आज भी लोगों में से शिर्क खत्म किए बगैर मुसलमान दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। पूरी दुनिया आपके हक में हो जाए ना, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आपका साथ दें, लेकिन अगर आपके मुल्क से शिर्क खत्म नहीं होगा तो आप दुनिया के लीडर नहीं बन सकते। वो आपको एड दे दे, वो आपको ग्रांट दे दे, वो आपको दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स में जगह दे दे, लेकिन आपकी आधी से ज्यादा कौम अगर शिर्क का शिकार है तो याद रखी बने बुजदिल कर देता। तो लिहाजा ये बात कहकर के देखो तुम अल्लाह का डर पैदा करो, असली रिदात को छोड़कर नकली को पूजते हो, आज चीज की नकल बना के बेचने लगे तो पुलिस को पता चल जाए तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तो तुम नकली इबादत क्यों करते हो? अब दावत कितनी सादा थी लेकिन जवाब देखिए कितना टेढ़ा है। कफरू, तो उनकी कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफर की रविश, कुफर से फिर क्या मुराद है? ना शुक्री जो बड़े बने बैठे थे मिन कौमी, उनकी कौम के क्या कहा? माह से इल्ला बशरों में सलूकों, नहीं है ये आदमी मगर तुम ही जैसा। अच्छा बताइए कि सरदारों ने ये बात किसको कही? हजरत नूह को कही? नहीं कही, दूसरे लोग यानी जो नीचे के थे जिनको आप कह सकते हैं लोअर क्लास के लोग थे, उनको इन लीडर्स ने अपनी खूबसूरत तकरीरों के जरिए ये बात समझाई कि देखो देखो ये नो ठीक नहीं है, ये तुम ही जैसा तो आदमी है। गोया कि आप कह लीजिए कि लीडर्स ने और इन लीड्स ने आगाज रसूल की किरदार कुशी से किया, रसूल की जात पर कीचड़ उछाला। अब आप गिनते जाइए कि रसूल पर एतराज क्या चढ़ते हैं। नंबर एक बशर मिसलु को पहला एतराज, यानी आप कल आपसे कोई पूछ सकता है कि आयात की रोशनी में बताइए कि अंबिया पर क्या एतराजात किए गए, तो पहला एतराज क्या था कि देखो ये बेबशर मिसलु को तुम ही जैसा आदमी है। अच्छा जी तुम ही जैसा है तो मुराद क्या है? इसके अंदर वो ही बात छुपी हुई है के नबुवत हमें मिलती, सरदारी हमें मिलती, और अगर अल्लाह ने किसी को भेजना था तो इंसान की बजाय फरिश्ते को भेजता। ये पहला इल्जाम था, खैर आगे चलते हैं। दूसरा इल्जाम, युरीद हुई या तफद्दल अलैकुम, ये तुम पर अपनी फौकियत जताना चाहता है, यानी इसको लीडर बनने का शौक है, ये बड़ा बनना चाहता है, ये इक्तदार का भूख है नाउज़ु बिल्ला, ये सरदारी का भूख है, और नबुवत और रिसालत का तो बस एक ढोंग है। ये है दूसरा हमला। जैसे अल्लाह के नबी सल्लम के नबुवत के दावे के बाद कुछ लोग अबू तालिब के पास आए थे और आकर इसी किस्म की बातें की थी कि अबू तालिब अपने भतीजे से पूछ लो, अगर ये बादशाह बनना चाहते हैं हम इसको बादशाह मान लेते हैं, दौलत चाहता है सारे इसको दौलत दे देते हैं, सरदारी चाहता है हम सारे कबीलों के मिलके इसको सरदार बना लेते हैं, किसी खूबसूरत औरत से शादी करनी है तो हम कर देते हैं। हर दौर में लोगों को दीन की तरफ बुलाने वालों का किरदार मशकूक लगा। ये लिख लीजिए, हिदायत की तरफ बढ़ते हुए कदम उनके ही रुकते हैं जिनके दिल में दावत देने वाले के खिलाफ बदगुमानी आ जाती है। दावत कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, देने वाले पर शैतान ज्यादा कीचड़ उछालता है। और आप तारीख से चंद सबक लेके देख ले, बहुत कम ऐसा हुआ कि लोग कुरान और सुन्नत पर कोई बात कर सके, क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। कोई शोशे उठे, चंद शोशियां जो पूरे पिछले 14 साल की तारीख में हम पड़े उंगलियों पे गिन सकते हैं। हर दौर में दीन की दावत देने वाले आइमाए कराम सहाबा या उसके बाद, उनके जात पे कीचड़ उछला गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे आज तक उठाया जाने वाला कीचड़ है। आपकी शादियों को इशू बनाया जाता है, आपकी हजरत आयशा से शादी को इशू बनाया जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये शैतान का एक तर निवाला होता है कि दीन की बात कहने वाले के खिलाफ दिल में बात डालो ताकि लोग दीन छोड़े। हालांकि मिसाल है, दीन की बात कहने वाला कुछ भी चाहता है, मिसाल है कि वो बशर है, ठीक है जी, तुम्हारे ही जैसे, आगे आप पढ़ेंगे ये वही खाता है जो तुम खाते हो, जिन स्टोरों से तुम खरीदते हो ये खरीदता है, जो तुम पीते हो वो पीते हैं, मिसाल है। अगर नबी ऐसे नहीं है तो जिसको उससे हिदायत मिली उसको इससे क्या लगे। ये सिंपल सी बात है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि मैंने भी आपके सामने जूस पिया, वही जो आपने पिया, लेकिन जो बात मैंने उस जूस को पीने के बाद आपको बताई उससे आपको फायदा हुआ, तो क्या आप इस वजह से उस बात को नहीं मानेंगे आप वही जूस पी रही हैं जो आप हम पी रहे हैं, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। यानी जात में नहीं खोना, हमेशा याद रखिए नजर पैगाम पे रखें। हमें बात कहने वाला 1000 बातों पे अमल ना करे फिर भी ना छोड़े उसकी बात सुननी जब तक आपको उसकी बात से फायदा मिले। बात वाजे। और अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा तो किसी ने अपने ऊपर तकवे के नाम पे कितने लुबादे क्यों नहीं पहने, आप उसकी बातों में मत है। आज की दौर का ये बहुत बड़ा शिर्क है, लोगों ने दीन सिखाने वालों को खुदा बना लिया। इस तरह लोग पूछते हैं कि उनके जैसे अल्लाह के नबी के लिए आता है कि उनका पसीना ना गिरे तो उनको जमीन पे ना गिरे और उनके वजू के पानी को ना रखे और उसको जिस्म पे लगा ले, आज लोगों ने अपने बुजुर्गों के साथ ये मामले करके रख दिए। फायदा कोई नहीं है, ऐसे लीडर्स कल क्यामत के दिन हमारी हिदायत का जरिया नहीं बनेंगे। तो ये बात करके अगली बात है कि ये तो तुम पर एक फजीला चाहता है, फद्दल यो फद्दिलो तफदील, बड़ाई बड़ा बनना चाहता है। हालांकि आप देखिए कि नबी की दावत क्या थी, नबी तो कहता था कि अल्लाह को बड़ा बनाओ, और ये इल्जाम कितना सरासर लगा रहे हैं कि ये खुद बड़ा बनना चाहता है। असल में इनके अपने जहनों में था, ये यहां से ये भी बात समझ आती है, जिसके अपने जहन में बड़ा बनना होता है ना उसको खुद भी नहीं वासफा पता होता, लेकिन अंदर छुपा हुआ कीड़ा है उसको दूसरे की बातों से भी यही फीलिंग होती है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि इन लोगों का बेसिक मसला क्या था, क्योंकि यहाँ कुफर कर लीजिए। देखिए सच्चा इस्लाम आता है ना तो सब एक जैसे होते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। सुनते हैं ना, इस्लाम का मैसेज है मसावात। उन्हीं सड़कों पे लीडर्स भी जाते हैं और उन्हीं पे वर्कर्स भी जाते हैं, वही बाट तोलने के उनके और वही इनके, और वही खाने उनके वही इनके पीने हैं। लेकिन वो लोग जिनके दिमागों में खुद बड़ाई का, इस सिस्टम को पसंद नहीं करते। इनका बेस्ट सिस्टम क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। नाम सुना होगा ना, ये फिरौन की पॉलिसी थी, आज भी मौजूद है, डिवाइड एंड रूल। यानी अब ये मारूफ जुमला है कि हमारे मुल्कों में जो फसादात होते हैं उसमें अक्सर का हिस्सा, अक्सर का जो पीछे सिरा जुड़ता है वो हुकूमत के साथ जुड़ता है। मैंने किसी से कहा, मैंने कहा हुकूमत पागल है, खुद अपने दौर में किसी शहर में या इलाके में लड़ाई झगड़े कराए और लोग उसको बुरा कहे, कहते नहीं वो इसलिए कि इन्हीं छोटे छोटे मसलों में उलझे रहो और हमें ना देखो। अब ये तो किसी की बात है, इसको तुम छोड़ना, इसकी मैं परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग खुद को बड़ा देखना चाहते हैं ना, उनका दिल क्या होता है कि हम वो काम करें जिसमें पंप एंड शो बहुत सारी है। मतलब आप देखिए कि जब इस किस्म का दीन सामने होता है ना तो फिर कुछ बातें दीन के नाम पे शोहरत पा जाती है। मसलन आप देखिए कि जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी और 5 वक्त की नमाज और उनकी जिंदगी तो बस इस छोटी सी चीजों में होती है। वो तो चाहेंगे कि सब बराबर हो, तो यही चाहेंगे ना कि हर एक बंदा एक ही जगह पे दिखाई आती है, लेकिन बड़ों की जिंदगी में दीन के नाम पर भी फेस्टिवल्स मनाने वाले, ये उर्स मनाने वाले, और इनकी जिंदगी में क्या होता है कि कुछ शो ऑफ हो। अब दूसरे लोगों को ये पसंद नहीं है, उनके पास ना वक्त है ना पैसे है। मसला देखिए कि अगर इन लीड्स की बात करें, आज अगर इस्लाम आता है हमारे मुसलमानों के मुल्कों में, सबसे ज्यादा बड़े उनके मुखालिफ इन लीड्स होंगे, क्योंकि वो इस्लाम के मुखालिफ है, उनके पास पैसा है, उनको दिल, उनका दुनिया में भी दिल लगता है, वो कहीं महफिल मौसिकी है, कहीं शाम गजल है, कहीं राग रंग है, कहीं मेले, कहीं ठेले है। अब वो वक्त का भी इस्तेमाल चाहते हैं और माल का इजहार भी चाहते हैं, वो तो चाहेंगे ये सब कुछ हो। सच्चे इस्लाम जब आएगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो क्या कहेंगे, इस सच्चे इस्लाम पेश करने वालों को फनेटिक कह दो, टेररिस्ट कह दो, इनको फंडामेंटलिस्ट है कह दो, दिस एंड दैट। छोटे लोगों का ये मसला ही नहीं होता, लिहाजा उन्होंने नबी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। और ये बात हमेशा से रही, कल भी थी और आज भी, तो लिहाजा कहने लगे बड़ा ही चाहता है। तीसरा इल्जाम, अब देखिए ये रियाया को, पब्लिक को नबी से बदगुमान करने वाली बातें है ना। तीसरा, क्या ख्याल उनके दिल में डाल रहे हैं कि वलो शाह मलाइकतन, हाँ अगर अल्लाह ने चाहता, अगर अल्लाह चाहता तो अलबत्ता फरिश्ता उतार देता। यानी आप देखिए कि वो सीधे साधे लोग हैं। याद रखिए कि जो गरीब तबका होता है वो अमूमन कम पढ़ा लिखा होता है, वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते और इतनी खूबसूरत बातें भी नहीं वो कर सकते जैसी ये करते हैं। अब उनके दिल में खामखा ये ख्याल डाल रहे हैं कि देखो वैसे बात तो सोचने की है कि अगर कोई नबी आता तो फरिश्ता आता। अब उसकी बात सुन के कोई 8-10 ने तो कहा इब्न, हाँ बात जी तुमने सोची नहीं है। गोया कि उनको लगा कि बशर की बजाय अगर फरिश्ता आता तो शायद हमें हिदायत ज्यादा मिल जाती, तो ये उनका एक इल्जाम था। चौथा इनका देखिए गुण, मा समेना बिहाजा फी आबाई नलवलीन, हमने इस तरह की कोई बात अपने पहले आबा अजदाद में सुनी ही नहीं है। ये पांचवा उनका हर बात है रसूल के खिलाफ करने का, कि इसका दावा बिल्कुल नया है, हमने तो ऐसी कोई बात अपने बाप दादा के दौर में सुनी नहीं कि अल्लाह ने कभी किसी इंसान को नबी किया। चलिए छठा इल्जाम भी अगली आयतों में देख लीजिए, इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना, ये तो बस एक जुनूनी शख्स है, क्रेजी, इज अ क्रेजी मैन, इसको तो बस दीवानगी लाहक है, ये तो बस एक धुन का सवार है, इसको तो बस हर वक्त दीन 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 और दीन ही लगता है, बस ये तो दीवानगी की हद के ऊपर पहुंचा हुआ है। अब आप देखिए ये इल्जाम लगता है दीन वालों पर, एक पैसा कमाने में दिन रात एक करते शख्स, कभी लोग उसको दीवाना नहीं कहेंगे, कहेंगे वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रोग्रेसिव, और बहुत वक्त से पहले इनको पता चलता है मार्केट की दर है और क्या है, कमा रहा है। बच्चा स्कूल में आपका पढ़ता है, दिन रात पढ़ने लग जाए तो लोग क्या कहते हैं, माशाल्लाह मेरे बच्चे को पढ़ने का शौक है, रात को भी नहीं सोता। आप दीन की तरफ एक से दूसरा काम तो हाथ में ले, सबसे पहले धमकी आती है जो कर रही थी, तो वही काफी है, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की, सवार ना कर लो इसको। ये क्या जुमला है कि तुम औरतों ने तो दीन अपने सर पे सवार किया हुआ। आप याद रखिए यही ताना हर दौर में मिला कि ये तो जुनूनी हो गई। जुनून का लफ्ज यहां मौजूद है जिन्ना में, जन्ना होता है छुपना छुपाना, छा गई, इसी से वो सारे लफ्ज हैं जो जनीन और फीटस हमने पीछे भी कहा। यानी ये दावा रसालत तो बस एक जुनून है, एक क्रेज है, और ये 4 दिन का फैशन है, जब जुनून उतरेगा देखना इन सबको होश आ जाएगी। फतरब्बसू हत्ता हीन, अब अगला भी जरा देखिए गुमान क्या दिल में डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो, इसका बुरा हशर होने वाला है। अब आप जरा अपने ऊपर लें, नूह की जगह आप अपना नाम लिखें, आपने कद अफलहल मोमिनून से लेके वारिसून तक की आयतें पढ़ ली, आपको तो अपनी जन्नत अब अपनी आंखों के सामने दिखती है। पहले आपकी 4 घंटे की कमिटमेंट थी, आप कहते हैं तो कुछ भी नहीं, जन्नत जब फुल टाइम है तो पार्ट टाइम कोशिशों से तो नहीं मिलेगी। पहले 4 दिन सोचते थे, अब आप कहते हैं 7 दिन सोचती हूँ। आप करके तो देखिए उस जन्नत को अपने सामने गोल, लोग आपको भी यही 5-6 किस्म के ताने देंगे। इनको तो हो क्या गया, हो क्या गया, और ऐसे लगता है कि जैसे लोगों की कोई चीज लेके भाग रहा भी बोला, हालांकि आप उसका कुछ नहीं ले रहे। आप बाजारों में धक्के खाएं कोई परवाह नहीं, आपके बच्चे रोए खाएं ब्रेड पे बटर लगा के खाते रहे कोई कुछ नहीं कहता, शादियों की तैयारियों में आप मारे मारे फिरे, पार्लर्स में जाएं, जॉब करें, गाड़ियां ठीक कराएं, ग्रोसरी खरीदे, कोई जुनूनी नहीं कहेगा। आप जरा यहां से जाके किताब खोल के बैठ के तो देखें, कि कल टेस्ट है, तैयारी करनी है, वो कहेंगे ये एक जुनून सवार हो गया, ये तुम्हारा दीन, मैं थक गया उस बात से। याद रखिए, ये इंसान नहीं शैतान दिलों में डालते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोगों से शैतान इतने गलत गलत काम करवा लेता है कि वो इंसान खुद फिर आईने में तस्वीर नहीं अपनी देख सकते कि ये मैंने जोश में कह क्या दिया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन असल में उस वक्त शैतान वो काम करवा रहा होता है। अगर कभी हमारी दीन के नाम पर ऐसी मुखालफत हो तो क्या करें, गिव अप? तो फिर और क्या चाहिए किसी को, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। उस वक्त अगर आप इस बात का यकीन रख दिलवा देंगे ना कि ये मेरी ऑक्सीजन है, ये मेरी जिंदगी है, तो फिर याद रखे ज्यादा नहीं लोग आपसे उलझेंगे। और ये छोटा सा एक टेस्ट होता है और ये सबका होगा, अल्लाह महफूज रखे, मुझे तो महफूज रखे, मैं तो वोट नहीं कर सकती है वल्लाही, दिन रात यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसे किसी फितने में ना डालना कि मैं तेरे दीन के काम से हटा दी जाऊँ। जीरम
जी बाकी जो दीन का काम है उसको समझा नहीं जाता। जिस तरह हम बात हो रही थी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड दोनों के भाई जॉब पे जाना, तो मैंने कहा कि मैंने भी जॉब पे जाना है, फर्क सिर्फ ये है कि आपको वहां तनख्वाह मिलनी है और मैं सिर्फ अल्लाह सुभान तआला के लिए कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बुध को मेरी छुट्टी है तो आपने भी छुट्टी करनी है। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, मैंने अपने काम से जा
तो इसका बहुत आसान जवाब था,
जी
आप उनको कहें, वो जो मंडे से फ्राइडे काम करते हैं कि मंडे से थर्सडे,
डिफरेंट डिफरेंट अभी
कभी
अभी
फ्राइडे को
जो
करते हैं,
जी
तो बस जिसे उनको कहना कि फ्राइडे को मेरी छुट्टी है, आपको भी करनी पड़ेगी। बराबरी, इक्वालिटी, बराबरी की बात है। हम तो पढ़े लिखे मुल्क में, जिस मुल्क में वहां तो औरतों की हकूक की बात है। देखिए ना कि मेरी छुट्टी है तो तुम भी कर लो, मेरे सर में बीमार है एस्प्रिन तुम खा लो, बस यही होता है। मेरे हस्बैंड अल्लाह ना करे कभी बीमार हो ना, कभी साल में एक दफा भी शायद अल्लाह ना करे, तो कभी कहो ना गोली खाओ, कहते खाए तो कहते तुम भी खाओ मेरे से। अल्लाह के बंदे मैं क्यों खाऊं, नहीं फिर तो मुझे क्यों कह रही हो जी।
लेकिन
इंशाल्लाह
कुछ
जी, इधर से और भी किसी का था जी, आप फरजाना सेवेंटी परसेंट क्यों कहा आपने, 100% को कहते हैं, ये 30% भी बहुत है बेकार। यकीन करें लोगों को हमसे कुछ भी नहीं लेना, हम हैं किस काम के जी। आप इधर से नर देखिए, उधर चेंजेस तब आएंगी जब आपके अंदर फर्मनेस होगी। ये दिन रात सुनते रहते, मैं जा रहा हूं तो ये भी जाएगी, मैं कर रहा हूं तो ये भी करेगी, सारा प्यार मोहब्बत आता ही तब है जब हम दीन सीखने शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल आप देखिए कि हम ये तो एक लाइट सी बात कर रहे थे, लेकिन हम सब खुद इसको पहचाने, ये सारी बातें हमारा स्ट्रेस टेस्ट होती है, हम कितनी जल्दी पिघल जाते हैं। असल में वो भी देख रहे होते हैं कि चेक करूं ये कच्ची तो नहीं हो गई, ये ढीली तो नहीं हो गई, इसको अब इसके बगैर रहने की आदत हो गई है कि नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कि जितना ज्यादा हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे ना, उतना ज्यादा वो पीछे हो जाएंगे। और हर इसलाह करने वाले को ये ताना जरूर मिला कि जिनको तो लीडर बनने का शौक है, ये रोब बड़ा डालते हैं, ये सूखा रोब है, ये बस ऐसे ही बात है, रोक कोई नहीं है, बस ऐसे ही गुस्से में रहते हैं, ये वो है। ये शैतान एक ऐसी बात डाल देता है, क्योंकि वो इसलिए डर तक के दिल में एक सवाल पैदा होता है कि हजरत जुनू की बात में तो कहीं बड़ाई का कोई तस्वुर ही नहीं था, क्यों वो ऐसा करते हैं? तो इसकी वजह क्या है कि हर इंसान के अंदर फितरी तौर पर खुद बड़ा बनने का शौक होता है, होता है, ये माने ना माने, बच्चे में भी होता है, आप में भी है, मेरे में भी है। इस्लाम कहता है कि इस जज्बे को तुम किस में बुरा करो, असाबिकून बन जाओ, तुम आगे चलो, फफेरो इल्लल्लाह बनो, सारी ला मगफिरतिन व जन्नत की तरफ कोशिश कर लो। अब वो जब ये देखते हैं कि हम तो सारी दुनिया लगाकर अपना वक्त एफर्ट्स लगाकर बड़े ना बने, तो ये सब कुछ छोड़कर बड़े कैसे बन गए? हमारे तो बड़े बड़े घर हैं, इनका तो घर भी बड़ा नहीं। ये फिर उस वक्त उनको समझ नहीं आती कि जो चीज हमें दौलत से ना मिली, माल से ना मिली, औलाद से ना मिली, वो इनको कहां से मिल गई। तो फिर वो फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, इनको तो नहीं नमाजें पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तो मुफ्त हो रहे हैं, दिस एंड दैट। याद रखिए हर इंसान अपने अंदर का चुगलखोर होता है, जब बोलता है ना तो वो असल में अपनी सोच की गवाही दे रहा होता है। असल बात है कि वो इस पैगाम को फलता फूलता नहीं देख सकते, क्योंकि उनको पता है जैसे ही ये सच्ची दावत आम हो जाएगी हमारी फिर बातें नहीं चलनी। और जो दाइये दीन इस ताने को बर्दाश्त ना कर सके वो दीन के काम का नहीं है। हर एक को अपनी जात बड़ी प्यारी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग दीन के लिए वक्फ नहीं होते, क्योंकि वो लोगों की नजरों में छोटा नहीं बनना चाहते। और फिर जब खुद जरा हटते हैं तो फिर अपने बारे में डिफेंसिव होते हुए बातें करते हैं दीनदारों पे, ये तो ढकोसला है जी, आपको क्या पता अंदर के, भी क्या है अंदर आके देख लो, किसको पता है। सिर्फ तुम्हें एक अंदर से किसी अपने अंदर देखो कितना गंद भरा हुआ है, हर इंसान के इस 5-6 फुट के वजूद के अंदर कितनी गंदगी है। एक हवा खारिज होती है तो आप देखिए इंसान अपनी बदबू खुद नहीं सूंघ सकता, तो फिर तुम दूसरों के। ये बात असल में नबी पर नहीं दीन पर होती है। और पीछे सूरह बकरा से पढ़ते आ रहे हैं, आनू मिनु कमा आमन सुफहा, क्या मैं इन बेवकूफों जैसे ईमान वाले हो जाएं। साहबा को बेवकूफ नहीं कहा उन्होंने, अल्लाह के नबी को नहीं कहा, समझ ही नहीं आता था कि इनको चाहिए क्या और उनको समझ ही नहीं आएगी। फिर दूसरी बात देखिए, मां समय नबी हाजा फी मिल्लती, क्या लफ्ज गुजरा था कि हमने ये बातें तो कभी अपने पिछलों में गुजर गई, आगे आ रही है। एक एक जी, ये क्या इल्जाम है कि जी हमने तो ये बात कभी पिछलों में सुनी ही नहीं। ये भी एक शैतान का बहुत ही खूबसूरत हमला होता है। आज भी ये कहा जाता है, ये नई बातें कहां से आप लेके आ गए, ये तुम्हारी दादी नानी ने नहीं की। वैसे माँ बाप से कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ नाम रखने की हद तक हम अपने बड़ों के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जहां उस ना बात का दुनिया पे कुछ हद पड़ता है तो कहते हैं ये तो बातें हमने कभी सुनी नहीं। भी कहाँ सुनी है बात, तो कहते हमने तो ये कभी नहीं पढ़ा। तो मैं तो फौरन उसके बाद पूछा जी आपने क्या कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, कुरान आप पूरा जानते हैं? नहीं वो तो नहीं। हदीस पढ़ी है, बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, तिर्मिजी पढ़ी है, इब्ने माजा पढ़ी है, अबू दाऊद पढ़ी है? नहीं ये तो नहीं पढ़ी। तो फिर आपने पढ़ा कि आप कहाँ से कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा। कभी भी ऐसी बातों के आगे आप शर्मिंदा ना हो, यकीन करें एक से दूसरी बात कोई नहीं कर सकेगा। पैगंबर की बात इनको नहीं लगती है, हालांकि ये बात तो सबसे पुरानी है कि अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी को तसल्ली दी, सुकून दिया कि कोई बात नहीं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो करने दो। अब हुआ क्या, नबी का जरा फैसला सुनिए, वो तो अपनी सी कर चुके। अल्लाह ताला अब नबी के जरिए से बात कैसे करवाते हैं, फरमाया आयत नंबर 26, قال رب انصرني بما كذبوني। नूह ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार तो मेरी मदद फरमा, इस पर कि इन्होंने मुझे छुटलाया, और दूसरा इसका तर्जमा क्या कि इन्होंने मुझे झूठा करार दिया। ये है कारे नबूवत। 7 किस्म के इल्जामों के जवाब में उनके मुंह नहीं लगे, क्या कहा, अल्लाह तू मेरी मदद कर। ये है बेहतरीन दरवाजा जिसको खटकाया जा सकता है। अल्लाह ना करे आप पर दीन के नाम पर कोई इल्जाम लगे, और अगर कभी लगा तो रब बिन सोरनी बीमा कर जरूरी, अल्लाह तू जान और तेरे बंदे जाने, मैं तो एक लफ्ज नहीं बोलूंगा इनके खिलाफ। आप देखिए कैसे अल्लाह को जोश आया, फौरन जवाब दिया, ना तो हमने इसकी तरह वही की कि हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाइए। फैजा जामरूना वफारत, फिर जब हमारा हुक्म ना हुक्म आन पहुंचे, फिर जब हमारा हुक्म आन पहुंचे और तन्नूर उबल पड़े, फस लुक फी हम इनकुल, तो रख लेना इसमें तमाम मखलूक में से जोड़े, हर तरह के जानदार हैवानात, एक नर एक मादा, इनको कश्ती में रखना ताकि इनकी नस्लें महफूज हो जाए और आगे से ये दुनिया चलती जाए। हाँ लेकिन वह का अपने घर वालों को भी बिठा लेना, मगर इल्ला मन सलाम, अगर सिवाय वो उनके जिनके बारे में पहले से एक बात तय हो चुकी। क्या तय हो चुकी, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि वो डबोए जाएंगे। ये एक और जगह भी कुरान में हम पढ़ेंगे कि जिनके नसीब में डबोया जाना है, इशारा है बीवी और बेटे की तरफ जो मुशरिक थे, यानी जिनकी हलाकत का फैसला पहले से हो चुका, इनके बारे में ना बात कीजिए। हाँ वला तो खातिबनी फिल्लजीना जलमू, मगर मुझसे बात ना कीजिएगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया। जलमू के नीचे लिख लीजिए शरक, शरीकू या शरकू, उनके बारे में बात ना कीजिए जिन्होंने शिर्क किया, यानी यह जुल्म शिर्क के मानों में, क्योंकि उस दौर में अभी जुल्म, अभी शिर्क ही आम था, कोई बाकी चीजें तो दिखती नहीं उनके अंदर। तो कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया उनके बारे में मुझसे बात ना कीजिएगा। और तो खात इबनी से मुराद सिफारिश है, बात ना करे मुराद के उनकी सिफारिश ना कीजिएगा, उनके बारे में आप जुबान ना खोलिएगा, क्योंकि इन्नहुम मुग़रकून, यकीनन वो सब गर्क किए जाएंगे, सब डुबो जाएंगे, इन सब के नसीब में सिर्फ डूबना है। खैर फिर क्या हुआ आगे देखते हैं, आज 28, फइज़स्तवैता अंत व मम्मा का अलल फुल्की, फिर जब तुम और तुम्हारे सब साथी कश्ती में बैठ जाएं, इस तवैता का जो लफ्ज है ना, सवा से, दोनों किनारों से बराबर हमवार हो जाओ, यानी सवार होने के बाद जमकर बैठ जाओ, तस्कीन की जा रही है, तसल्ली दी जा रही है कि फिक्र ना करो तुम अजाब से बच जाओगे। तो क्या कहो, फकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नजाना मिन कौमिज़ ज़ालिमीन, तमाम शुक्र उस अल्लाह का है जिसने हमें इस जालिम कौम से निजात दी। हाय हुर्रा नहीं करना, जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने, फुलां जिंदाबाद और फुलां की बड़ाई। पता क्या चला कि जब बंदे को जालिम कौम से, दुश्मन से निजात मिले किसी आफाकी वबास आफाकी अजाब से बच के, मतलब सैलाब से आप बच गए, जलजले से आप बच गए, एक्सीडेंट हुआ सब मर गए आप बच गए, कोई भी ऐसा लम्हा आ सकता है कि जब हम मरते मरते बचे तो अपनी तारीफों के गुण न गाओ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफें उसके लिए कि जिसने जिसने मुझे निजात दी जालिम कौम से। और साथ ही कह दो वकुर रब्बी अंजिलनी मुंजलम मुबारक, और दुआ करना है कि मेरे परवरदिगार मुझे उतार देना बरकत वाला उतारना। देखिए हजरत नूह को पहले से तसलियां दी जा रही हैं कि तूफान तो बहुत सख्त आने वाला है, 6 महीने तक जमीन भी पानी देगी और आसमान से भी पानी आएगा, लेकिन आप बच जाएंगे। किसी को पता चले कि जिस जहाज में आप बैठ रहे हैं ये क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिक्र नहीं करें आप बच जाएंगे, तो तसल्ली हो जाती है ना। अल्लाह ने नबियों के दिलों को पहले ढारस दी कि तुम तसल्ली रखो, जब उतरो तो कहना कि अनजिलनी मुनजलम मुबारकन, तू मुझे उतार बेहतरीन तरीके से उतारना, हमें कुछ पता नहीं कर क्या होना है, लेकिन वंत खैरुल मुनजिलीन, तू ही है बेहतरीन उतारने वाला। यानी अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे दी कि तू ये करेगा और ये सब कुछ तेरे साथ होने वाला है। अब आप देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये सारी तसल्लियां दे दी गई और साथ ही हम सबको बता दिया आयत 30 में, इन्ना फी ज़ालिकल आयात, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं, वइन कुन्ना लमुबतलीन, और यकीनन हम तो आजमाने वाले हैं। अल्लाह ताला की ये सिफत देखिए जरा, मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो मेरा रंग उड़ जाता है अंदर से। अल्लाह मुबतला करने वाले, इब्तला का लफ्ज क्या है, बला से आजमाइशों में डालने वाले। हम कहते हैं ना फुला उस चीज में मुबतला हो गया, अल्लाह कहते हैं किसी की जरूरत नहीं है कि किसी तकलीफ में वो मुबतला हो, हम हैं मुबतलीन, यानी दुनिया में इंसान पर कोई आजमाइश आती है तो उसका पीछे से माखज अल्लाह की जात है। और मुबतलीन मुबतल की जमा, जांचने वाला, खरे और खोटे को अलग करने वाला, इब्तला उनसे इसम फाइल जमा मुजक्कर में, अल्लाह की मशियत के तहत दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की आजमाइश होती है। बिल्कुल वही बात जो सूरत मुल्क के शुरू में कह दी गई, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने जिंदगी और मौत को बनाया ही इसलिए कि तुम्हें इसमें परखे कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। तो गोया कि अल्लाह की जात लोगों को परखती है। अब यहां आप देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात एक लिहाज से पूरी होती भी दिखती है, लेकिन असल में बात आगे भी आएगी दूसरों में। लेकिन हम जरा सी इन चीजों पे गौर कर लेते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की, सब बोल दें 950 साल, 950 साल, इतनी तबलीग करने के बावजूद किसी को अपनी मर्जी से उस कश्ती पे सवार नहीं कर सके, नुकता है गौर का। आज लोग कहते हैं फुलां बड़े पहुंचे हुए हैं, अल्लाह उनकी मोड़ता नहीं है, अल्लाह के ऊपर उनका बस चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी इबादतें और रियासतें की। इस वाक्य से आपको और मुझे पता चलता है कि इंसान 950 साल भी दीन का काम कर ले फिर भी ना करे, मर्जी नहीं है, मर्जी अल्लाह की है। हम कैसे अल्लाह पर दावे कर सकते हैं? फिर आप देखिए कि नबियों की आजमाइश कितनी बड़ी है। अल्लाह ने उनको बताया ना, सब डूब जाएंगे और तुम बच जाओगे, तुम्हारे घर वाले, क्या दिल बे गुजरी होगी नूह के जब खबर मिली और जब आंखों से डूबता देखा। इतने सुरहुद में पढ़ चुके हैं ना, पूरी वो वीडियो थी, आप कह लें कि विजुलाइज करा दिया था सुरहुद में कि बेटा कैसे डूब रहा है और बाप उसको पुकार रहा है। इससे एक और बात पता चलती है कि ये जो दुआएं हजरत नूह ने मांगी, हम भी मांग सकते हैं, कहीं भी जाए ये पढ़े, रब या दखिलनी मुदखला, जैसे पीछे सीखी थी, अब यहां अंजिलनी मुनजला मुबारकन। किसी काम पे जा रहे हैं, कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है, कोई दीन का, कोई दुनिया का काम है, करते जाइए। फिर यहां देखिए लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का तरीका हिजरत बताया जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में जब कुछ छोड़ते हैं तो रोते धोते नहीं जाते, हाय मर गए दीन पे आ गए, हाय ये भी छूट गया, हाय ये भी छूट गया, बल्कि उस पर भी अल्लाह की तारीफ करते हैं। और ऐसे लोगों को डूबता देखकर ये नहीं कहा कि अल्लाह इनको बचा ले, क्यों? कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला उन लोगों से मोहब्बत कर ही नहीं सकता जो अल्लाह से मोहब्बत ना करे। ये अल्लाह ताला की जात है, क्योंकि उनको यकीन है कि आज वक्ती जुदाई है, कल आखरत में हमेशा का मिलना होगा। तो यकीन कीजिए कि एक इंसान की जिंदगी में ये बहुत बड़ा एक वक्त आ जाता है कि जब दीन के नाम पे किसी को छोड़ना या दीन के नाम पे किसी को अपनाना होगा। फिर एक और बात जो इस हिस्से से हमें थोड़ी सी अपने लिए अमल की मिलती है कि भाई मां समय नबी हाजा की मिलती है यफिया भाई नजम ने अपने बाप दादा के ऊपर नहीं पढ़ा। आप देखिए कि आज के दौर में आप देखिए लोग बहुत सारे वो काम करते हैं जो बड़े लोग नहीं करते थे, नित नित नई किस्म की दवाएं हैं, बड़े लोग हकीमों की गोलियां खाते थे। कभी किसी ने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरे नाना दादा ने तो कभी ऑपरेशन नहीं कराया था, मैं एसी में नहीं बैठूंगी क्योंकि वो एसी में नहीं बैठते थे, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगी वो पढ़ते नहीं थे। कभी नहीं होगा, मैं KFC नहीं खाऊंगी, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ना बाप दादा नहीं करते थे, मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। और मजे की बात देखिए, कल तक तो पीयर प्रेशर था ना, आज चाइल्ड प्रेशर है। बस दफा जब हम दीन पे आते हैं और अपने बच्चों को भी समझाते हैं ना, तो फिर बच्चे आगे से कहते हैं अच्छा जी खुद तो सब कुछ कर लिया, हमारी बारी आई तो रोक दिया। अब इस पे जो माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं ना, उनके बच्चे उनके सर पे सवार हो जाते हैं, अच्छा जी आप तो ये करती नहीं, आप मेरी उम्र में थी तो क्या आप हिजाब करती थी? कहते हैं ना मैं बच्चे बस ऐसे, तो उसका जवाब क्या दे? हाँ वाकई ये तो है, चलो फिर बेटा तुम भी कर लो ये काम। नहीं, सिंपल सी बात है, हाँ तुम्हारी उम्र में मैं हिजाब नहीं करती थी, तुम्हारी उम्र में मैं इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करती थी, तुम भी ना से करो, तुम्हारी उम्र में मैं वीडियोस नहीं देखती थी, तुम भी छोड़ दो। याद रखिए, जिसने भी आपके सर पर दीन के नाम पर कोई बड़ा बनना चाहा, आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। सोशल प्रेशर की जगह चाइल्ड प्रेशर इतना बड़ा हो गया कि हम अपने बच्चों से डरने लगे, हालांकि पूरी यकीन से कि हाँ हमें नहीं पता था, अब पता लग गया, आपको ऐसे करना पड़ेगा। बाप दादा के नाम पे कोई गलत काम करे तो उन्हें कहे नहीं, बल्कि अब आप ज्यादा अच्छे काम करके उनके लिए सदका जारिया बने ताकि उनको अल्लाह ताला उस बुराई पे छोड़ दे। नानियां दादियां बर्थडे नहीं मनाती थी, आज अब बर्थडे मनाते हैं, उस पे कोई नहीं बोलता। तो सारी बातों का खुलासा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का एक धोखा होता है जो इंसान के दिल में डाल देता है। और ये जो लफ्ज है ना मुंसल और मंजिल, इसी में लफ्ज से कहते हैं नजील, नजील कहते हैं नया आया हुआ मेहमान, बिल्कुल जो मेहमान अभी आया है ना आपके घर में उसको कहते हैं नजील, नुजुल कहते हैं ना मेहमानी को। फिर थोड़ा सा जब मेहमान आपके घर में रह ले ना तो उसको दईफ कहते हैं, पीछे वो भी आगे आप पढ़ेंगे हजरत इब्राहिम के किस्से में आएगा। तो हजरत नूह के मुखालिफों को अल्लाह ने डुबो दिया, ऐसे लगता है कि शिर्क की गंदगी से जमीन को पाक किया। जैसे शादी के बाद भी पूरा घर धुलता है ना, क्योंकि कई तरह के लोग आए होते हैं, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यही किया उनके साथ भी, कि उनको जमीन से पाक किया और पूरी जमीन को धो धुला के खाक साफ कर दिया। फिर एक और ताना उन्होंने हजरत इब्राहिम हजरत नूह को दिया था कि भाई आप तो हमारे जैसे हैं, जैसे हमें कोई आपके और हमारे अंदर फर्क नहीं है। तो आज भी ये सोच पाई जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो नेक लोगों को हमेशा गरीब देखना चाहते हैं, जकात देने वाला नहीं जकात लेने वाला देखना चाहते हैं। उनकी नजर में गुरबत तकवा की अलामत है। वो कहते हैं कि इनके पास दुनिया का कुछ ना हो, तो याद रखिए कि गुरबत तकवा का सर्टिफिकेट नहीं है और दौलत किसी की बेदीनी की अलामत नहीं है। अल्लाह ताला गरीब को भी सख्त दिल करके गुनाहगार कर दे और पैसे वाले को भी अल्लाह ताला दीन की दौलत दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में लोग दुनिया की दौलत और दीन की दौलत इकट्ठी होती नहीं देखते। किसी दीनदार के बारे में आप देखें, लोग अच्छा जी फुलां तो होटल में जाते हैं, फुलां की तो इतनी लंबी गाड़ी है इमाम साहब, और इतनी और थोड़ी ज्यादा ही लंबी कर देते हैं, इतनी लंबी गाड़ी में आते हैं, लंदन में तो उड़ेगी नहीं गली में, करेंगे क्या उसका। तो कभी ये गलत फहमी ना रखें, कभी आप सब अपने लिए एक मेयार बनाए, क्योंकि आप अब कुरान के दाई बनने वाले हैं, आप ये पढ़ रहे हैं तो आगे जाके आपने भी तो इंशाल्लाह यही काम करने हैं। कभी किसी दूसरे दीनदार पे उंगली ना उठाए प्लीज, आपका हम मसलक है कि नहीं, इवन अकीदे में कमी, शिर्क में, बिदत में, लेकिन जिसके साथ नाम दीन का आ जाए आप खामोश हो जाए। ये वो जाने उसका रब जाने कि हमने किसी के हिस्से की जन्नत लेनी है क्या, हम कोई जन्नत अल्लाह की इतनी छोटी है कि अल्लाह ने अगर उसको दे भी दी तो हम उससे छीनना चाहते हैं। अपने काम से काम रखें, इसलिए कि जब तक हमारे दिल नहीं खुलेंगे दूसरों के मामले में, अल्लाह ताला हमारी बात में असर नहीं डालेगा, बरकत नहीं होगी। कभी इस तरह की बातों को सुनकर अग्रेसिव होकर परेशान होने की बजाय क्या करें, अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह जैसे तूने अंबिया कराम की मदद की थी इसी तरह तू हमारी मदद कर दे। फिर इसके बाद आप देखिए कि बाकी नबियों के किस्से इनडायरेक्ट हैं। अगली चंद आयतों में ये नहीं नाम लिए गए, जैसे पीछे हमने पढ़ा ना हजरत नूह के फौरन बाद किस नबी का नाम आता है पता है, याद है, हूद, यानी हजरत हूद का आता है, फिर उसके बाद हजरत सालेह का आता है, यानी कौम नूह के बाद जो दूसरी बड़ी कौम थी वो कौम आद थी, आद के बाद समूद थी, समूद के बाद फिर अगली कौमें थी। लेकिन यहाँ इशारतन अल्लाह सुबहान तआला ने ये बात करके कि हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ जब ये मामला हुआ, असल में यहाँ कहानियां जो ना वो अंबार रसुल की निस्बत कसस और रसुल की तरफ ज्यादा माइल करती होती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि एक के साथ जो हुआ सो हुआ, अब बाकियों के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हुआ, और वो कैसे था आयत देखिएगा, आयत नंबर 31। सुम्मा अंशान मिन बादिहिम करनन आखरीन, फिर हमने पैदा की इनके बाद दूसरी कौमें, यानी जिस तरह ये मामला हो गया उसी के बाद फिर अगली कौमों के साथ भी ये मामला हुआ। फरसलना फीहिम रसूलन मिनहुम, फिर हमने भेजा उनके अंदर एक रसूल उन्हीं में से, किसकी तरफ इशारा है, कौम आद और कौम समूद। नबी का पैगाम क्या था, अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि मालिकुम मिन इलाहिन गैरु, कोई नहीं उसके सिवा कोई माबूद तुम्हारा। बिल्कुल वही मैसेज जो पहले नबी का था, अफला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते, यही जुमला हजरत नूह ने भी बोला था ना। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि तकवा चौकीदार है जो गुनाहों को जिंदगी में आने नहीं देता। तकवा खत्म हो जाता है ना तो इंसान दीनदार होते हुए भी अल्लाह से नहीं डरता। यही बात यहाँ दिखा दी गई कि अल्लाह का डर बंदे को गुनाहों से रोक लेता है। कौम का जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल वैसे ही मामला है। वकालुल मलौ मिन कौमिही, और कहा सरदारों ने उसकी कौम के, देखिए वाहिद है ना तो साफ लग रहा है कि कौम आद या फिर बाद में समूद मुराद है, यानी हजरत हूद या हजरत सालेह को यही जवाब मिला। क्या, किन से मिला, अल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरती, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया और आखिरत की मुलाकात को झुटला दिया। तीसरा उनका वसफ क्या था, वातरफ ना हूं फिल हयात दुनिया, हमने खुशहाल बनाया था उनको दुनिया की जिंदगी में, अतरफ ना हो, पीछे तस्करा नहीं था, बाकी चीजें पिछली कौम के साथ भी थी, यहां इसको देख लीजिए, अतरफ ना हो, हमने उनको ऐश दिया था, मजाक दिया था, हमने इनको दुनिया की दौलत दी थी, ऐश हमने दिए लेकिन इन्होंने उसी ऐश में पड़कर हमको ही भुला दिया। क्या कहा, नंबर एक, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो तुम्हारे ही जैसा आदमी है, यही इल्जाम था पीछे भी, याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु, खाता है ये वही कुछ जो तुम खाते हो, सेम बात होगी। अब बताइए कि किसी शहर में नबियों के नाम पर या दीनदारों के नाम पे एक अलग स्टोर हो और दुनियादारों के नाम पर एक अलग स्टोर हो, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, वो ये चाहते हैं कि जिस स्टोर से दीनदार शॉपिंग करे ना, वहां जौ हो, सत्तू हो, पुरानी सूखी खजूरें हो और कुछ इस तरह की दो चार चीजें, खत्म। ये जो कुछ हमारे टेबलों पे आता है, ये इनके क्यों है? ये बहुत खाना पीना, ये तो दीनदारी के खिलाफ है। और आप यहाँ भी देख लीजिए, दीनदारों को लट डाउन करने का एक अंदाज है कि इनको जरा नीचा दिखा दे, इनको छोटा करके दिखा दे। वह यशरबू मिम्मा तशरबू, ये वही पीता है जो तुम पीते हो। हम भी डिस्टिल वाटर पीते हैं, ये भी डिस्टिल वाटर पीते हैं। अगर ये नेक है तो इसको क्या जरूरत है ये साफ पानी पीने की? ये गंदा पानी पिए और फिर बीमार भी ना हो, क्योंकि ये दीन वाला है। सोच देखिए कितना घटिया करके लोग देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इनकी ये बातें मिलती जुलती हैं, क्योंकि इनकी सोच मिलती जुलती थी। अगला इल्जाम क्या लगा रहे हैं फिर ये बड़े भी? अब अपने छोटों को बता रहे हैं कि देखो, वलई ना था तुम बशरम मिसलकुम, अगर तुमने अपने जैसे एक इंसान की पैरवी कर ली, इन्नकुम इज़ल खासिरून, फिर तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। वही प्रवोक करने का स्टाइल है कि तुम अपने जैसे इंसान की बात ना करो। अब आप देखें कि जो बातें ये नबियों पे लगा रहे हैं, दोनों तीनों बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन कितना है। जैसे पीछे से नूह पे सात किस्म की बातें हैं, तो आप देखिए एक तरफ कह रहे हैं जुनूनी है, दूसरी तरफ कहते हैं बड़ा बनना चाहता है। अब आप बताइए, जो शख्स क्रेजी हो, क्या उसके अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन का शौक होगा? क्रेजी लोग तो सर में मट्टी डाल के बैठे होते हैं, उनके मुंह से राल गिर रही होती है, वो तो इस बात से बिल्कुल बेनियाज होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, उनके आपस में भी कोई बात मैच नहीं करती, ये मतलब है। लिहाजा असल यहाँ ये बात कि तुम अगर बशर की बात मानोगे तो उस जैसे होगे, इसके अंदर छुपी हुई बात पता क्या है? हमारी मानो, हम तुम्हारे हुक्मरान हैं, हमारा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा, हम जो कहें वो मानो, इनकी ना मानो क्योंकि ये नेक और ये मौलवी है। हाँ, अगर मान ली इन ना को खासिरून, तो बस तुम तो खसारे में चले जाओगे। मतलब ये कि तुम्हारी जॉब छूट जाएगी, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। आज क्या ये सोच नहीं कि दीनदारों के पीछे लग के, हाँ अब कर दो घर बेच दो, ये दीनदारों के पीछे लग के अब सारे कारोबार छोड़ दो, बच्चों को घरों में बिठा लो। और आप देखिए कि ये बातें इतनी कड़वी नहीं है जितनी इसके अंदर वो सोच कड़वी है, जो दीन से नफरत की सोच दिखती है। फिर अगली बात में कहते हैं 35, अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्तुम तुराबुम व इज़ाम, क्या ये वादा देता है तुमसे इस बात का कि तुम मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाओगे, अन्न व मुखरजुम, तो फिर तुम निकाल लिए जाओगे। इस बात को आज के तौर पे आप क्या कहेंगे? क्या सोच दी जा रही है? अकीदा आखिरत को बिगाड़ रहे हैं ये बड़े लोग जो होते हैं ना, जब देखते हैं ना कि सीधे साधे लोग अंबिया कराम के पीछे लग रहे हैं, तो वो फिर उनको ऐसी बातें देते हैं। देखो, दुनिया के बाद तुम कहते हो मर के जिंदा होगे, आज तो तुम्हारे पास चप्पलें भी ठीक नहीं है, आज तो कपड़े भी फटे हुए हैं, तो गोया के जब दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो वहां भी नहीं मिलना। लोग दुनिया को इतना खूबसूरत करके दिखाते हैं कि बेचारे सीधे साधे लोग फिर सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई अगर इन दीन की तरह बुलाने वालों की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है, तो कल आखिरत इनके कहने पर खूबसूरत कैसे होगी? लिहाजा वो कहते हैं कि तुम इस बात में ना आना, हई हाथ अलीमात हुआ दोन, नामुमकिन, बिल्कुल ही नामुमकिन है ये बात जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, जिसको लोग कहते हैं इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आज अमल से लोग कह देते हैं, उन्होंने जुबान से कहा था। आज वो दुनिया में ये बातें आप देखिए कि लोग कहते हैं ए जहां मिठा थे दूसरा कितने मिठा, ये दुनिया मीठी है इसको मजा करो। हर दौर में अपने दिल को बहलाने के लिए लोग एक ही किस्म के जवाब देते थे कि इन ही इल्ला हयात न दुनिया न मूत हुआ न हया, ये कुछ नहीं है मगर बस हमारी दुनिया की जिंदगी। मतलब क्या इसका? कि दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है, ना नमूत व नाहिया, हम खुद ही मरते हैं और खुद ही जिंदा, यानी मदर नेचर है, बस पहिया घूम रहा है, अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं इसमें। और वमा नहनु बिमबऊसीन, हम तो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। जिसको ये यकीन हो गया कि मैंने दोबारा नहीं उठना, वो तो फिर जीने के का हक अदा कर देगा ना, तो वो तो गुनाहों का भी हक अदा कर देगा। यही सोच आज लोगों को गुनाहों पर मायल करती है। मौज मस्ती ऐश ये वो क्यों? वो कहते हैं मौज कर लो, दुनिया एक ही है, बाबर वैश गोश के जहां दोबारा नीस। तो लिहाजा हम तो दोबारा नहीं उठेंगे। रह गया ये दीवाना शख्स, तो इन हुआ इल्ला रजुलन इफ्तरा अल्लाह कजीबा, ये नहीं है मगर एक ऐसा शख्स जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर, ये ऐसी झूठी नबुवत के दावे हैं, रिसालत की बातें। वमा नहन लहू बिमुमिनीन, हम इनकी बात नहीं मान लाते, हम इनकी बात नहीं मानने लगे। क्या आपको एक एक जुमले से बड़ाई का एहसास नहीं झलक रहा? कैसे बड़े थे, डंके की चोट पे कहते हैं हम नहीं मानेंगे इनकी बात, हमने इसको नहीं मानना। अच्छा सवाल पैदा होता है, सारी बातें तो ठीक है, ये नबी को इंसान क्यों नहीं मानना चाहते थे? इसलिए कि अगर नबी को इंसान माना तो फिर वो सारे काम हमें भी करने पड़ेंगे जो नबी करता है, क्योंकि हम कह सकेंगे कि नबी भी इंसान है तो तू भी इंसान है। फर्क समझ आ रहा है? आज के दौर में लोग क्या कहते हैं, दीनदारों को बड़ा समझो, और फिर कहते हैं वो उनकी क्या बात है जी, वो तो माशाल्लाह बड़े पहुंचे हुए, हम तो गुनाहगार लोग हैं। मतलब क्या होता है कि हम इनको बड़ा और बनाते ताकि जो कुछ ये कर रहे हैं हम उसे एग्जेम्प्टेड है। राइट, क्लियर हुई ये बात? इंसान मान लिया तो ये मुमकिन है ना कि जो ये कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, तो इसको इंसान ही ना मानो ताकि कल ये कह सके कि जो ये कर रहे हैं वो हमारे तो बस की बात ही नहीं है। जी आप फिर
लोग ऐसे हैं कि जिस तरह अगर कभी कोई मुश्किल आ जाए या कुछ आ जाए तो अगर उनको रेफरेंस दिया जाए कि जिस तरह पहले भी सहाबाए कराम या नबियों पे मुश्किल, तो वो फिर उस तरह जवाब देते हैं कि वो तो अलग ही लोग थे, तो इसका कितना
बिल्कुल वही सोच है, एग्जैक्टली वही सोच है कि जी उनकी तो बात ही ना करें, वो तो नबी थे, जो वो तो थे अबू बकर ही थे, वो तो उमर ही थे, वो गोश्त पोश के इंसान थे, उनको भी तकलीफ होती थी, चुटकी काटो तो उनको भी दर्द होता था। लेकिन लोग ये बात इसलिए कहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन दे दो, हम तो ये कर नहीं सकते। ये तो आज भी देखे ना, आप अपने बच्चों में से किसी बड़े बच्चे पे कोई काम करता देखें तो आप छोटे बच्चे को कहेंगे बेटा देखो बड़ा भाई कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तो आप देखिएगा वो बच्चा भी कोई ना कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा, चूंकि उसको आपने बहुत टाइम दिया, चूंकि वो बड़ा है, चूंकि आप उसको करती है वो क्यों नहीं करेगा, ऐसा है ना, चूंकि उसका कमरा अलग है मुझे तो छोटे भाई के साथ सोना पड़ता है इसलिए मैं नहीं कर सकता। इंसानों का एक वीक पॉइंट है कि अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर लेने के बजाय दूसरे पर डालते हैं, और यही बात इधर समझ में आती है कि हम इस नबी को इंसान नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर मान लिया तो फिर समझो कि हमें वो सब करना पड़ेगा। देखिए ना, फरिश्ता होता नबी तो वो पांच छोड़िए 50 नमाजें पढ़ता, हमें कहा जाता आप भी नमाज पढ़े, देखे अल्लाह के नबी पढ़ते तो हमें क्या कहना था, वो तो जी फरिश्ते हैं वो पढ़ सकते हैं हम तो नहीं पढ़ सकते, तो इसको आगे से हम क्या जवाब देते? बाकी ठीक है भाई, फरिश्ते ही पढ़ सकते हैं इंसानों के तो ये बस की बात नहीं है, वो देखो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी कितनी सादगी से की, तो हम क्या, अच्छा नहीं जी वो तो अल्लाह के नबी हो तो फरिश्ते हैं वो तो कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि नबी को बिल्कुल जज्बाती तौर पर अपने बराबर समझ, ऐसे लगता है कि जैसे नबियों के दिल में पत्थर था, उनको अपने जाती गम नहीं चुभते थे, दुख नहीं चुभते थे, बीमारियां परेशानियां नहीं दुखती थी, और हम चूंकि वेरी सेंसिटिव, असल में मैं फील करती हूँ अक्सर जितना आप अपनी जात के गिर्द घूमेंगे ना उतना आप अपनी जात को सोचेंगे, उतना आप तकलीफ महसूस करेंगे, उतने आप सेंसिटिव हो जाएंगे, उतने बीमार हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे। एक दफा अपने आप को कहें कि मैं कुछ नहीं हूं, ये जो घरों में मासियां काम करती हैं, कभी आपने सोचा, कई दफा आपसे भी दुबली पतली उम्र की छोटी या बाज़ दफा बूढ़ी होती है, 3 घरों का काम कर जाती है शाम तक, आप सिर्फ अपने कमरे को नहीं साफ कर सकते क्योंकि मैंने सोच लिया मैं नहीं कर सकती, मैं बड़ी, मेरे जेब में पैसे हैं, मैं कर सकती हूँ अफोर्ड, मैं लूंगी। हम अपने घर का काम कर लें अगर किसी दिन मिसाल है तो फिर देखिए जो हम सुनाते हैं उसके बाद, और वो 3 घरों का करके बेचारियां सेहतमंद चली जाती है, वो इतना वॉक भी कर लेती हैं। जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो असल में ये अपनी बड़ाई है। आज भी अपने इस जिस्म को हम जरा थोड़ा सा नगेड़े, मैं क्यों नहीं कर सकती, कोई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो आप देखेंगे कि 1-2 महीना लगेगा, आप उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह करने लग जाएंगे। चलिए नबियों का जवाब सुन लीजिए, काला रब्बिन सुन है तो फर्क, जो नूह ने कहा ये इस नबी ने कहा, रब मेरे तू ही मेरी मदद कर दे इस पर जो मुझे झुठला रहे हैं, अल्लाह ताला का जवाब भी उसी से मिलता जुलता है, काला अम्मा कलीली लयुसबिहुन्न नादिमीन, कुछ ही देर में ये लाजिमन हो जाएंगे पछताने वाले। यानी अल्लाह नबी को तसल्ली देते हैं, डोंट वरी, थोड़े से अरसे की बात है, शर्म आएगी। किस बात पे शर्म आएगी? जब इन पर अजाब आएगा और अपना बुरा अंजाम देखेंगे, उस वक्त फिर इनको अफसोस होगा इस झुटलाने पे कि हमने अपने नबी को क्यों झुटला दिया। और फिर वो वक्त आ भी गया, आयत 41 देख लीजिए, फगजत हुमुस सैहतु बिल हक्की, और इनको आप पकड़ा एक चिंगाड़ ने हक के साथ, फजाल ना होंगे, तो हमने कर दिए इनको पूरा कूड़ा करकट। अजाब के पाम पे आया, सैहा सख्त आवाज, सैहा यानी ऐसी आवाज जिसे कान के पर्दे फट जाए, जोर की एक आवाज आई थी इस कौम पर। बल्कि तीन किस्म के अजाबों का तذکرہ मिलता है इन पर। और जो लफ्ज है ना गुस्सा, गुस्सा कहते हैं सैलाब के पानी के ऊपर बहने वाले घास फूस को। पानी कहीं जमा होता, आप देखते हैं तिनके, तूड़ी, पत्ते, धागे, जो चीजें होती है ना वो आ जाती है। मुराद है हल्कापन। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस में बिल्कुल ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों की कसरत होगी, लेकिन वो कैसे होंगे? गुसान, कूड़ा करकट जो पानी की सतह पे तैरता है, बेकीमत होंगे, कोई उनकी वैल्यू नहीं होगी। खेत से फसल कट जाने के बाद जब पीछे खसो खाशाक रह जाते हैं, लेफ्ट ओवर्स रहते हैं, झाड़ झंकार है, तो पानी में पड़ के वक्त के साथ सब वो कूड़ा करकट बनते हैं। वो दलिल कौम जालिमीन, तो फटकार है इन जालिमों की कौम पर। ये जलस बहुत बार बार आता है ना, इसका दो दफा दो तरह से तर्जमा हम करते हैं ना। एक इसका तर्जमा होता है दूरी, और दूसरा इसका तर्जमा होता है लानत। लानत क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी। तो बोध में लानत और दूरी दोनों के मानी आते हैं। चले बोध हो गए खत्म। उसके बाद सुमनशाना मिम्बादिहिम कुरूनन आखरीन, फिर इसके बाद हमने बहुत सी और कौमें पैदा कर दी। यानी अल्लाह की सुन्नत है, जब एक काम नहीं कर रहा कोई तो उसको हटा के उसकी जगह दूसरे को ले आओ। सिंपल सी बात है, क्यों उसकी लाश को ले कर फिर के हर वक्त उसी को ही दुखते रहते हो? पता क्या चला कि जब उन्होंने झुठला दिया तो अल्लाह ने दूसरे रखे। और कुरून जो आया, ये करण की जमा है, एक दौर के लोग, सेम टाइम इरा के लोग कह लीजिए, करण, आखरीन बाद वाले। अच्छा आखिरीन होता तो क्या मानी होता? बहुत दफा बताया गया, कोई बताएगा अपने से आखर और आखिर में क्या फर्क है? जी आप बताइए। ऑपोजिट क्या आपने? आखर नेक्स्ट, आखिर लास्ट। मैं आपसे कहूं कि आपका नेक्स्ट पीरियड कौन सा है, तो मैं क्या कहूंगी? आखर नेक्स्ट वन। और मैं अगर आपसे कहूं कि आपका आखिरी पीरियड क्या है, तो आखिर होगा। ठीक है, तो यहां मुराद है कि इसके बाद फिर दूसरी कौमें आ गई। और हकीकत क्या है कि मा तस्बिकु मिन उम्मतिन ना चला, हाँ कोई कौम भी अपने मुकर्रर वक्त से ना आगे बढ़ सकी, वमा यस्ताखिरून, और ना ही उसे मौखिर कर सकी। यानी एक के बाद एक कौम तबाह होती गई, जब उनका वक्त पूरा होता और दूसरी कौम आती। ये आपको मुझे हिस्ट्री सुनाई जा रही है इंसानियत की, कि अल्लाह की सुन्नत यही रही हर दौर में। ये बड़ी बड़ी कौमें गई, उसके बाद क्या हुआ? आयत 44, सुमर सलना रसुलना तत्रो, फिर भेजा हमने अपने रसूलों को पैदर पे। यानी कौमे नूह गई, कौमे आद गई, कौमे समूद गई, अब उसके बाद बाकी रसूल आ गए। कुल्लमा जा उम्मत रसूलुहा, जब कभी आया किसी कौम के पास उसका रसूल। सोचिए जरा कितनी खुशकिस्मती होती है किसी कौम के पास कि उसके पास भी अल्लाह की बात करने वाला आ जाए। छोटी बात है, आप आज से 20-25 साल पीछे जाके सोचिए कि आप लंदन में आए और इधर कोई हलाल गोश्त की दुकान नहीं थी, और आप कोई 20-25 मील दूर जमे भी बर्मिंगम से गोश्त लाते थे। मिसाल है, सुनी हुई ना बातें, हलाल मीट की दुकान खोल ली तो आपको क्या करना चाहिए था? अल्लाह का शुक्र करना चाहिए था। हाँ आप वो गोश्त ही है ना, छोड़ दें, गोश्त ना खाएंगे तो सब्जी खा लेंगे, अंडे खा लेंगे, फिश खा लेंगे। लेकिन उस कौम का क्या नसीब कि जो हिदायत से महरूम थे, जिनकी जिंदगी की प्रायोरिटीज फर्क थी, प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ था, अल्लाह उधर अपना पैगंबर भेज दे, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, याद रखिए, जिनकी जिंदगी में किताब खुल जाती है। रसूल का जो पैगाम था आज के दौर में, किताब का पैगाम है, तो क्या सिर्फ वो लोग ही खुशकिस्मत है जिनके पास रसूल आते थे? बताइए, क्या वो लोग खुशकिस्मत नहीं है आज के दौर में जिनके पास रसूलों का पैगाम आता है और रसूलों की छोड़ी हुई किताबें आती हैं? तो क्या मैं और आप खुशकिस्मत नहीं है? कभी फारिग बैठ के खुद से पूछिए, मेरी क्या नेकी थी कि ये किताब मेरी जिंदगी में आ गई? वल्लाही मैं तो आज भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि अल्लाह ने इस किताब के लिए मुझे मौका दिया। कहाँ हमारा नसीब था, हम क्या थे, हम किधर बैठे हुए थे, हमारी क्या प्रायोरिटीज थी, हम जिंदगी में क्या उम्मीदें लेके जी रहे थे? आज से 20-25 साल पीछे जाके देख लें, जब जिंदगी का आगाज होता है, जब इंसान नया नया जवानी की सीढ़ी पे पांव रखता है, तो क्या तमन्नाएं क्या होती हैं? कहाँ था ये हमारी जिंदगी का प्लान कि हम अल्लाह की किताब को पढ़े? और बिलीव भी, इस किताब को पढ़ के जो फीलिंग्स होती है ना, यही फीलिंग जहाज की खिड़की में से नीचे दुनिया को देख के होती है। पहाड़ भी, दरिया भी, कहीं बादल है, कहीं रात है, कहीं अल्लाह ये सब तेरा है, अल्लाह ये सब तेरा है, जिसकी ये किताब है, जिसकी ये बात है, तो इस नेमत की कदर करें ना। कदरे लोगों के हाथ से नेमतें चली जाती है और फिर वो इधर के भी नहीं रहते तो उधर के भी नहीं रहते। अब हमें दुनिया वाले कबूल तो नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि एक दफा जब रिजेक्ट हो गए तो खत्म। अब तो बस इज्जत इसी में ही है, किसको थाम ले, खुशकिस्मती बना। और ये किताब कभी भी थोड़ी दिली से और टूटे दिल से नहीं आती, रोते धोते, ये तो फखर के साथ आएगी। अल्लाह ताला कहते हैं, जब भी रसूल आया कज़्ज़बू हो, उन्होंने झुठलाई दी। कितने बदनसीब थे। आज भी कितने लोगों की जिंदगी में चांस होता है किताब सीखने का, इल्म सीखने का, अहदीस सीखने का, लेकिन कज़्ज़बू। वजह क्या है? वो आलू पकाने या प्याज पकाने और पालक छीलनी और फुलां करना है, कज़्ज़बू। छोटे छोटे कामों में इतनी बड़ी किताब को छोड़ा हुआ, और इसकी कदर आएगी क्यामत के दिन और मौत के वक्त। मैं आज सुबह इतनी खूबसूरत बात पढ़ रही थी कि किसी ने मैसेज भेजा, ये चूंकि यहाँ किताब की बात है तो आपको सुना देती हूँ। यानी हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हमारी जिंदगी में बरकत कहाँ से आनी है। रियली हमें अगर इस बात का यकीन आ जाए ना कि ये किताब हमें क्या देती है, तो फिर आप मान नहीं सकते कि इसको छोड़ना इंसान की जिंदगी में महरूमियां कितनी लाता है। ये जो बात कल के सबक में भी एक बात थी कि हमने पढ़ी थी ना, कि वक्त के साथ इंसान जो है वो दुनियावी जिस्मानी तौर पे कमजोर हो जाता है, जो जिंदगी के 7 मुख्तलिफ मराहिल थे इसी के साथ है। लेकिन आप यहाँ सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने कुरान को पढ़ा वो कभी नाकारा उम्र तक नहीं पहुंचेगा। ये सही अल तरगीब की रिवायत है जिसको नासिरुद्दीन अल्बानी ने ठीक कहा। अब ये हदीस है कि जिसने उम्र पे नहीं आएगा, जी। अब जब मैंने पहले भी ये हदीस पढ़ी हुई थी तो मैं सोचती थी कि अर्जल उम्र तक पहुंचने से मुराद ये है कि फिर वो बूढ़े होने से पहले मर जाएगा, जो हमारे जहनों में आता है ना कि नाकारा उम्र नहीं है। लेकिन इसका बड़ा खूबसूरत एनालिसिस इन्होंने लिखा है, लिखते हैं कि इस हदीस में कुरान पढ़ने से मुराद कुरान का मुतालिया है। जो आदमी कुरान का गहरा मुतालिया करेगा, समझ रहे ना, डीप डाउन उसमें गौर करेगा, इसको कुरान से मुसलसल फिक्री गजा मिलती रहेगी। ये फिक्री, फिक्री से बना कि उसकी थॉट प्रोसेस जो ना, ये फिक्री गजा आदमी को मुसलसल तवानाई देती रहेगी। इसका नतीजा ये होगा कि वो नाकारा उम्र तक नहीं पहुंचेगा। इसका जहन मुसलसल तौर पर बेदार और मुतहरिक रहेगा। ऐसे आदमी का जिस्म बूढ़ा होगा लेकिन इसका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं हो सकेगा। कुरान दिमाग को जवान रखता है। तो ये लिखते हैं कि रिसर्च के जरिए से ये मालूम हुआ है कि इंसान के जिस्म, ये बड़ी काबिले गौर बात है, मुझे इस चीज ने बहुत हिट किया था, कि रिसर्च के जरिए से ये मालूम हुआ है कि इंसान के जिस्म और दिमाग में एक दिख रही, इसमें और हमारे ब्रेन में एक फर्क है। फर्क क्या है? खालिस ख्याल पर बुढ़ापा आता है लेकिन दिमाग या ब्रेन पर बुढ़ापा नहीं आता। वक्त के साथ हमारा जिस्म ओल्ड होता है, छुरियां पड़ जाती हैं, हड्डियां चटकती, जिस्म का हर उस बुरा आता है, लेकिन ये देखते हैं कि जो ब्रेन है ना, जिस तरह शुरू में फ्रेश होता है, या आखिरी वक्त ये बुरा नहीं होता। लेकिन दिमाग या ब्रेन पर बुढ़ापा नहीं आता। कोई आदमी अगर अपने दिमाग को मनफी सोच से बचाए, ये काबिले गौर बात है। डोंट बी नेगेटिव, किसी के लिए नेगेटिव ना सोचे। जो बंदा नेगेटिव थॉट से खुद को बचाए, वो मुकम्मल तौर पर इसको मुस्बत सोच का हामिल बनाए, तो इसके दिमाग पर बुढ़ापा नहीं आएगा। कोई शख्स कुरान का गहरा मुतालिया करे, तो इसको हर दिन कुरान से तख्लीकी अफकार की गजा मिलती रहेगी, यानी क्रिएटिविटी आती है। ब्रेन जो जवान है, तो वो हर वक्त क्रिएटिविटी दिखाता है उसको। इसको कभी जहनी फाके का तजुर्बा नहीं होगा। इसका दिमाग मुसलसल तौर पर सरगर्म रहेगा, वो मुसलसल तौर पर तख्लीकी फिक्र से भरा रहेगा। कुरान के बाद इतनी और सोचे लग जाती हैं कि अपनी जाती तो कुछ सोच आती नहीं, दुआ तक नहीं याद रहती, बाद में ख्याल आता है कुछ तो मांग लेते। तो दिमाग का काम करने वाले, दीन के नाम पे अपने दिमाग को लगाने वाले, वो कभी बूढ़े नहीं होते। और आप देख लीजिए, आइमा कराम की जिंदगियां भी आपने पढ़ी, आपके अपने दादा नाना ससुर बड़ों को देखिए, 80-90 की उम्र में भी उनके होशवास बिल्कुल ठीक थे। कल किसी बुजुर्ग की डेथ हुई है हमारी फैमिली में, कल या परसों, तो कहते हैं कि जिस्मानी तौर पे बिल्कुल हम कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी उनका मेमोरी, उनकी सब चीजें ठीक थी। पहचानते भी थे, बातें भी करते थे, लेकिन दिमाग नहीं बूढ़ा होता। ये तो हम बूढ़ा कर देते हैं कह कहकर। मादी गजा जिस तरह जिस्म को ताकत देती है, इसी तरह फिक्री दरियाफ्तें इंसान को तवानाई अता करती हैं। इंसान के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश तजुर्बा दरियाफ्त का तजुर्बा है। दरियाफ्त मीन टू अचीव समथिंग, जैसे आप कह सकते हैं, दरियाफ्त को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवर करना। कुरान पढ़ते हुए इंसान डिस्कवर कर रहा होता है, तो कहते हैं कि इंसान के अंदर इतनी ज्यादा डिस्कवरीज हो रही होती हैं इस तरह से, कि कुरान का गहरा मुताला करने वाले को मुसलसल तौर पर इस किस्म का तजुर्बा होता है। यही तख्लीकी तजुर्बा किसी आदमी के लिए समर में रुकावट बन जाता है कि वो बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचे और वह नाकारा होकर रहे। क्या करने वालों इतने ज्यादा प्लान्स, इतने ज्यादा डिफरेंट उसके अंदर एक वक्त में काम हो रहे होते हैं कि उसको नेगेटिव बातें ही नहीं आती जहन में। तो यही बात है कि जिसको अल्लाह इसकी तौफीक दे दे, तो इसकी वैल्यू पहचाने। जी आप रहा। जी बिल्कुल, यानी इलास्टिसिटी जिस चीज में होती है ना, वो वैसे भी फ्लेक्सिबल है, तो दिमाग में इलास्टिसिटी होती है। जितना इसको खोलते जाएंगे खुलता जाएगा। बल्कि मैंने इस पे कल ही शायद एक इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, कि जिसमें उन्होंने यही सारा बयान किया हुआ था कि हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है। तो क्या करना है छोटे छोटे गमों में जीकर। गम तो उनको भी होंगे जो नहीं आते, गम तो उनको भी है जो नमाज नहीं पढ़ते, गम तो उनके पास भी है कि जो अल्लाह को नहीं याद करते। तो कितने खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास अल्लाह की किताब बन आ जाए। लेकिन देखिए इनकी बदनसीबी कज़्ज़बू हो, उन्होंने छुटला दिया। फत बाना बादहुम बादन, इला फिरौन वमले ही, फिरौन की तरफ और उनके सरदारों की तरफ। लेकिन याद रखिए कि फिरौन जिससे मूसा का मुकाबला था, उनकी उसके सामने तौरात नहीं थी, तौरात उसके बाद मिली थी, पीछे बहुत दफा बात हो गई। किया क्या उन्होंने, वो ही किया जो उनसे पहले ने किया। फस्तकबरू वकान कौमन आलीम, उन्होंने तकबर भी किया और बड़े सरकश लोग थे। देख लीजिए बड़ाई है, सेल्फ प्रोजेक्शन, हम बड़े लोग। और आलीम, आली की जमा, और आली कहते हैं बड़े बनने वाले को, जो खुद को बड़ा बना दे, जो अपने आप को ले। बड़े ऊंचे लोग समझते थे। आइन लाम वाव इसका रूट है अलूफ, बुलंद होना। सफला का मुतजाद है, कहते हैं असफल साफिलीन, तो ऑपोजिट ऑफ सफला क्या है, आली। जगह जिसम और मर्तबे की बुलंदी के लिए इस्तेमाल होता है, पसंदीदा मानों में भी आता है और नापसंदीदा में। यहाँ कौन सा मानी है, नापसंदीदा में, यानी खुद बहुत बड़े बनते थे। पता क्या चला कि इंसान हक को उस वक्त झुठलाता है जब खुद को बड़ा समझता है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इनको छोटा कर दिया ना, और ये जो निशानियां थी भी आयात थी ना, ये वही नौ निशानियां जिसका जिक्र सूरत अल अराफ में हम पढ़ चुके, अजाबों की सूरत में जाती थी। बस ने सुल्तान मुबीन जो आयत 45 में, इससे मुराद वो गुफ्तगू भी ली है जो फिरौन के दरबार में मूसा ने की थी। सूरत आहा में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लाजवाब कर देने वाली बातें मूसा को अल्लाह ने सिखा दी। और सुल्तान कहते हैं वो गुफ्तगू जो हरीफ को चुप करा दे, कोई आगे बोल ही ना सके, मुबीन वाजे। जैसे नमरूद के बारे में पीछे बताया, फबुहित अल्लज़ी कफर, इसी तरह नबियों की बात में एक वजन होता है। आधा जुमला बोलते हैं और लोग उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। पता क्या चला कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले के पास स्किल्स होनी चाहिए अच्छी तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने की। फिक्र सिर्फ पहुंचाने की हो, मनवाने की नहीं, वरना बात बदल जाएगी। तो अल्लाह का कलाम अपने अंदर एक दलील रखता है, लेकिन जब हम उसे मुनासिब मौके पर और मुनासिब तरीके से पहुंचाते हैं तो असर होता है, वरना बात नहीं बनती। और ये जब आता है ना, फर्स्ट तकबरू, तकबर किया, क्या तकबर था उनका कि गुलाम कौम के लोग अब हमें पैगाम दे। फिरौन को तो यही मान बड़ा था ना कि हम बड़े हैं ये छोटे हैं, ऐसे ही जैसे हमारे ड्राइवर का बच्चा आके हमें दीन सिखाए, तो हम कहते लो जी हम ड्राइवर के बच्चे से सीखे क्योंकि हम तो बहुत बड़े लोग हैं। इसी लिहाजा उन्होंने ये बात करके कह दिया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते फकालु नोमिनली बशर ही नहीं मिसली ना, उन्होंने कहा क्या हम अपने ही जैसे दो इंसानों पर ईमान लाए। ये दो इंसान कौन है, बोलिए, मूसा और हारून। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वकौमुहुमा लना आबिदून, जबकि इनकी कौम हमारी महकूम है। कौम से मुराद बनी इसराइल। ये बताइए कि आबिदून से यहाँ मुराद कौन सी गुलामी है, क्योंकि फिरौन और उसके दरबारियों ने मूसा और हारून पर एतराज वही किया जो हजरत नूह, हूद और हजरत सालेह की कौमें अपने रसूलों पे कर चुकी। वहां क्या था, हम भी इंसान ये भी इंसान, यहां बात गुलामी की आ गई। जी आप फिर देखिए, समझ लीजिए, इसको बड़े गौर से समझेंगे तो आज का मसला भी समझ आएगा। गुलामी दो किस्म की होती है, एक फिजिकल स्लेवरी, जिस्मानी तौर पे आप किसी के गुलाम है, कैदी की सूरत में प्रिजनर्स, या किसी भी कौम ने किसी कौम को छोटा समझकर उनको अपने अंदर रखा हुआ है। एक होती है जहनी गुलामी, जो फिजिकल स्लेवरी होती है ना, उससे कौमें हमेशा निकलना चाहती हैं। जैसे बनी इसराइल ने मूसा से कहा था कि अब हमारे लिए कुछ करो, हम फिरौन की गुलामी से थक गए, इससे निकल भी गई। और ये नस्बतन आसान होता है, थोड़ी सी कुवत मिल जाए तो कौमें इसके अंदर चल पड़ती हैं। लेकिन दूसरी गुलामी जिसको जहनी गुलामी कहते हैं, बींग इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम, उनके कल्चर, उनके तौर तरीके, उनके रंग ढंग से इम्प्रेस होना, ये गुलामी ज्यादा बड़ी होती है। बनी इसराइल दोनों तरह से गुलाम थे फिरौन के, और फिरौन को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता थी। फिरौन ने इसी बात का प्रिविलेज लिया कि देखो ये तो जहनी तौर पे हमारे गुलाम है, हमारे साथ रहते हुए इनके भी दिल में गाय की हुरमत आ गई है, हमारे साथ रहते हुए बेशक ये हमारी जूतियां सीधी करते हैं लेकिन खुश बहुत है क्योंकि हमारे रंग ढंग इनको अच्छे लगते हैं। इसीलिए आप देखिए कि फिरौन के चुंगल से छुटे, रास्ता बना दरिया में, लेकिन उधर जाके गाय को पूजने लगे। तो फिरौन ने इसी गुलामी का फायदा उठाया कि जो कौम गुलाम जहनी तौर पे गुलाम होगी वो कभी भी दुश्मनों से आजाद नहीं होगी। क्या ये बातें हमारे ऊपर भी कहीं आती हैं? 1947 में कौन सी आजादी मिली थी हमें? फिजिकल आजादी मिल गई, आजाद हो गए, जॉब अपनी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन आज 60-70 साल हो गए, कौन सी गुलामी से नहीं निकले? जहनी से निकले। जब कौमें जहनी गुलामी से नहीं निकलती, कभी उनको मुकम्मल निजात नहीं होती। बल्कि जिस तरह फिरौन खुश था कि ये हमारे गुलाम है, आज भी लोग खुश हैं कि पहले तो ये हमारे पास रहते थे, इनको हमें सोशल देनी पड़ती क्योंकि ये हमारे अंडर थे, अब रहते ही अपने मुल्कों में और रिसोर्सेज हम इनकी इस्तेमाल करते हैं और गुलामी इनकी है। तो बनी इसराइल कि ये बात आज बिल्कुल हमारे ऊपर फिट होती है। इतात, आपको पता ना इबादत के लफ्जों में इतात भी तो थी ना, इबादत, परस्तिश और गुलामी, तो यहाँ इतात के मानों में ये हमारे इशारों पे चलते हैं। वो कहते हैं ना, दे लिक द बोर्ड दैट किक्स द, आज भी कौमों का यही हाल है, वही जूते चाटते हैं जो उनको टुकड़े मारते हैं। उनके बेटों को मरवाओ, बेटियों को जिंदा रखो, ये लगे हुए क्योंकि हमने इनसे बड़े बड़े शराइत पे कर्जे दिए हुए, ये हाथ नहीं उठा सकते। कभी तो आप नहीं सोचते आज मुसलमान क्यों नहीं उठते? क्योंकि ज़हनी गुलाम है। फकज़बूहुमा फकान मिनल मुहलकीन, बस उन्होंने इन दोनों को जुटला दिया और हो गए हलाक होने वालों में। यही अंजाम होता है जो कौमे अल्लाह के बंदे बनने, अल्लाह के गुलाम बनने की बजाय इंसानों की गुलामी में आ जाती है, उनका नसीब यही है। आज भी यही मसला है, कल भी यही मसला था। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को इन चीजों का फायदा नहीं है। लिहाजा आगे फरमाया वलकद आते ना मूसल किताब अलाम यहतदून, हमने मूसा को किताब दी ताकि वो हिदायत पाए। इस आयत को हाईलाइट कर लें, यही मफहूम सूरत बकरा में हमने पढ़ा था। वइज़ बअथ्ना मूसा अरबईन लैलतन सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादी, उसके एंड पे क्या आया था? हमने तुमको किताब दी ताकि तुम हिदायत पाओ। किताब का वजह नजूल हिदायत है, बरकत नहीं, कसम खाना नहीं, सिर्फ उसके नाम पर लड़ना झगड़ना नहीं है। असल बात यह है कि इस किताब को अपनी जिंदगी में जगह दो, इस किताब की को बुक ऑफ गाइडेंस बनाओ। आज हमने कुरान को किताब हिदायत बनाने के अलावा सब कुछ बना लिया, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन हम इस किताब को किताब हिदायत नहीं बनाते। यही मसला कल बनी इसराइल का था और यही मसला आज हमारा है। लिहाजा उस मकसद को छोड़कर पीछे कर दिया गया, हलाक कर दिए गए। देखिए सूरत चल रही है मुफ्लहून के टॉपिक पे, वहां था मुफ्लहीन, यहाँ आ गया मुहलकीन। दोनों नमूने आमने सामने लाके खड़े कर दिए। फला कब होगी? जब वो सात किस्म की सिफात तुम्हारे अंदर होंगी। और हलाकत कब होगी? जब तुम गैरों के गुलाम बन जाओगे। मोहलक मुफअल का वजन है, हलाक किए जाने वाले। बहरे अहमर रेड सी में इनको डुबो दिया गया था, ये अल्लाह की अल्लाह का वादा है। जब कौमें बात नहीं मानती तो अल्लाह की जात ऐसे ही उनके साथ ये मामला कर देती है। तो लिहाजा इसकी मिसाल के बाद अब दो लाइनों में बनी इसराइल के बाद नसारा की बात कर दी गई कि वजअलनाबने मरियम व उम्मुहु आयतन, और हमने इब्ने मरियम यानी ईसा और इनकी वालदा यानी मरियम को एक निशानी बना दिया। ईसा किस बात की निशानी थे? बिन बाप के पैदा हुए या पैदा किए गए। और माँ किस बात की निशानी थी? कि एक औरत जितनी मर्जी बाइस्मत हो, अल्लाह आजमाना चाहे तो उसको भी आजमा लेता। दोनों निशानी ही थी ना। किसी औरत ने आज तक किसी बच्चे को जन्म दिया मर्द के सिवा, और ना कोई बच्चा जन्म पाया बाप के सिवा, तो दोनों निशानी बन गए। वह आ वही ना हुमा इला रबिन जाति करारिम व माइन, और हमने इन दोनों के एक ऊंचे टीले पर पनाह दी जो पुरसकून और चश्मों वाली जगह थी। अब ये कौन सी जगह थी? बस कहते वही टीला जहां खजूर के साय में हजरत ईसा की विलादत हुई थी। तो इशारा क्यों हो सकता है कि विलादत के बाद माँ बेटा कुछ अरसा वहां रहे? इसके बरस कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे मुराद वो जगह नहीं है, क्योंकि हजरत ईसा की पैदाइश के वक्त उस इलाके में हेरोदेस नाम का बादशाह था जो यहूदी था, और ये वो दौर नहीं है जिसका जिक्र इधर है। बस कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, यहां भी कहते हैं कि इस दौर में ऐसे हालात थे कि बच्चा को ख्वाब दिखाया गया था जिसकी वजह से नजूमिया ने उसको बताया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हलाकत का जरिया बनेगा। तो लिहाजा हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर मिस्र चली गई थी, और जब उस यहूदी बादशाह का इंतकाल हुआ तो फिर वापस आई, और उस वक्त हजरत ईसा की उम्र 10 से 12 साल की हो चुकी थी। बहरहाल हमें इससे तो फर्क नहीं पड़ता अमल में, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करके यहाँ इशारा कर दिया कि नबूवत का तार हजरत नूह से लेकर हजरत ईसा तक जुड़ा। आज के सबक की एक खास खूबी आपने देखी, सारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के इस एक सबक में आ गए। अमूमन ऐसा कम ही होता। हजरत ईसा बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, नबी सल्लम और ईसा के बीच में कोई और नबी नहीं है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जो साहिबे शरीयत बने थे। यहाँ जो लफ्ज है रबवा रा बा से रबा यरबू, इसी से लफ्ज रिबा है, सूद के लिए आता है, टीले को कहते हैं। तो ऊंची जगह से मुराद या तो दमिश्क है या फिर बैतुल मकदस है। और निशानी एक ये भी थी कि वक्फ कर दी गई दीन के लिए और इनकी परवरिश हैकल में हुई और अल्लाह ताला ने इनसे वो काम ले लिया जो दूसरों से नहीं लिया। जाती करारे रहने के काबिल जगह, माइन का लफ्ज इसको थोड़ा सा समझिए, चश्मे के लिए आता है, आराम से बहने वाला। इसके दो रूट आते हैं, अब आप दोनों याद करेंगे, मीम आइन नून मान, पानी का नरमी से बहना, और आइन या नून जो आमतौर पर चश्मे के लिए लफ्ज आता है, फीहा आइनुन जारिया, ठीक है। चश्मा आइन आंख को भी कहते हैं चश्मा, और जासूस को भी कहते हैं क्योंकि उसकी निगाह ऐसी चीजों पे होती है जहां मोमन नहीं होती। तो मुराद है कि वहां सैलाब की तेजी वाला पानी नहीं था बल्कि झरनों की तरह आता है। सूरह मरियम में भी हम पढ़ चुके हैं इसका तذکرہ। तो अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि जिस तरह हजरत मरियम और उनके बेटे को अल्लाह ने इतने दुश्मनों के बीच में से बचा लिया, हमें भी आज दीन के लिए अल्लाह तआला ऐसी ताकत दे कि हम ऐसी जाती करार पे रहकर अपने इस काम को कर सकें और अल्लाह तआला की मदद हमारे साथ हो। आप देखिए कि कितनी पुरसकून जगह होगी ना, लोगों के तानों से और इल्जामात से निकाल कर अल्लाह ने उनको पुरसकून जगह दी। पता ये चला कि जब कोई खुद को अल्लाह के लिए खालिस कर देता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत से पहले उसको बेहतरीन ठिकाना दे देता है। तो ये था सबक, अल्लाह ताला हमारी इस पे अमल की कोशिश को तेज भी करे और हम अमल कर सकें। कोई सवाल या बात हो तो पूछ सकते हैं। एक लफ्ज में पूरे सबक का क्या आपके दिल पर असर है? जी इधर से पास, हाँ बताइए। एक ही दावत है, ठीक है, एक लफ्ज। जी आप
कोशिश जारी रखनी है,
कोशिश
छोड़नी
जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है। जी दर सिमरी, नजर पैगाम पे रखनी है, पैगाम देने वाले पर नहीं। जी आप इधर से फरजाना, किताब से हिदायत पाने वाले ही कामयाब होते हैं, ठीक है। जी आप, जी शाबाश, दीन की बात पहुंचाने की कोशिश करनी है, मनवाने में पैगाम बदल जाएगा कि लोग मान लें हम बदल लेते हैं। जी आप सुनिए, कुरान पाक ऑक्सीजन है, सही। जी राहिला पीछे से आप,
यही दो चीजें कहना चाहती थी, एक ऑक्सीजन और दूसरा ये कि मनवाना नहीं।
मनवाना नहीं, ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं, हम नमाज भी पढ़ेंगे और साथ ही खाना भी खाएंगे। 106 हुए हैं इंशाल्लाह, 25 मिनट में, 1:30 पे इंशाल्लाह हम हदीस पढ़ेंगे आज, और उसके बारे में इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आपसे बात करूंगी। ऑनलाइन वाले इसके बाद चाहें तो अपना अलग से स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इरम पहले हम नमाज पढ़ लें कि खाना, जी आप में से जो भी चाहें, आई डोंट माइंड। मेरे पहले खाना दें ताकि नमाज के वक्त तक वो लोग रैप अप कर चुके हों। चलिए, आई डोंट माइंड, फिर खाना चल रहा होगा तो फिर क्लास में होगा ना। चले जो भी चाहे, जो इरम के वो कर लें। सुन्नतें अदा करेंगे तो फर्ज रह देंगे। चलिए
جزاكم الله خير كثير واحسن الجزاء استاذ، الحمد لله ہم سب نے آج بہت ساری باتیں سیکھی اور آپ سب کے کچھ کمنٹس بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس حق کے پیغام کو عام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، یعنی کسی بھی طرح ہم نے رکنا نہیں ہے۔ جو جتنی ہمارے پاس سکت ہے، جتنی ہمارے پاس ارد گرد ہماری جتنی بھی لمٹ ہے، اس تک ضرور کام کرنا ہے۔ ٹیک دی قرآن ایز مائی بک آف گائیڈنس، چینج مائی سیلف، بالکل قرآن ہدایت کے لیے ہے اور قرآن سے جڑے رکھے آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہم سب کو جوڑ کر رکھیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم سب کہ ہمارا جو علم کا سفر ہے وہ صرف نالج تک تو نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی بہت اچھے طریقے سے چینج ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل، क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किताब हाथ में रखने से हमें सिर्फ फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उस पे अमल से असल में उस इल्म का फायदा निकलेगा फिर। बिल्कुल। और पुट एफर्ट्स टू सेंड द मैसेज अहेड, बिल्कुल सही। और बदनी गुलामी के साथ जहनी गुलामी से निकलना है कुरान की मदद से, बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि हम यानी मैं भी आजकल एक किताब पढ़ी थी, तो उसमें मैं यही देख रही थी कि हम जब नॉलेज सीखते हैं, हम कोई इल्म हासिल करते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा अहम पॉइंट ही यही है कि हम उससे अपने अमल में या अपना तजकिया कैसे करते हैं ना। और अगर हमारे हाथ में किताब है भी, मगर उसके अहकाम पर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा, इट इज जस्ट लाइक दिस कि हमने उसको छोड़ा हुआ ही है। तो ये इतना अहम और इतना खौफनाक सा पॉइंट है कि सोच कर अपना मुहासबा करके डर भी लगता है, लेकिन फिर ये साथ साथ स्पिरिट भी आता है कि नहीं, मैंने अभी और करना है और मुझे अब मजीद एफर्ट लगानी है। बिल्कुल, पैगाम पहुंचाना है और मनवाने की फिक्र नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सबके लिए एहसान करे, हमारे लिए इस दुनिया में भी हर रास्ता आसान हो जाए जो खैर की तरफ जाता हो, और हमारी आखिरत भी संवर जाए। हम अल्लाह ताला से जब मुलाकात करें तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हम भी राजी हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें इस किताब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल आमीन। जजाकअल्लाह खैरन कसीर। हम भी इंशाल्लाह अपनी 20 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, ठीक है? और आप लोग भी, फिर ये है कि अब चूंकि अब हम अब से कर रहे हैं काउंट, तो आप भी 1:30 तक अपनी ब्रेक कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।